अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का एहसान, एक नया दिन, अल्लाह ताला की एक और नेमत। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। हर रोज़ सुबह जागते वक्त जब भी ये दुआ मांगे तो इस शऊर के साथ मांगा करें कि एक नया मौका मिल गया, एक नई अपॉर्चुनिटी कि हम जिंदा हैं और इसी में हमारी जान नहीं चली गई। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम इन पारों का हक अदा करें। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्राहली सदरी व यस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुय्यिर व तम्मिम बिल खैर। पारा नंबर 29, 29, सूरत अल मुद्दसिर। सूरत अल मुद्दसिर सूरत मुज़म्मिल ही के करीब की सूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का सिलसिला शुरू हुआ एक बहुत नया तजुर्बा था। उससे पहले की ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी थी। अल्लाह ताला ने प्यार से या युहल मुज़म्मिल कहकर और अब यहाँ या युहल मुद्दसिर कहकर ये एहसास दिलाया हम सब को कि अब सोने के दिन गए, अब उठिए, अब आराम के दिन नहीं है। सूरत मुज़म्मिल में तरतील के साथ कुरान पढ़ने और रात को खड़ा होने का हुक्म दिया गया। कह लीजिए कि सूरत मुज़म्मिल में क़याम फिल लैल था, अब यहाँ क़याम फिल नहार का हुक्म दिया जा रहा है। वहाँ कुरान पाक को तरतील के साथ पढ़ने का हुक्म था कि गौर व फिक्र भी करो, समझ भी लो, इसको अपने दिल पर भी लो, इसको जज्बात के साथ पढ़ो और अब हुक्म है कि अब इसको सुनाओ। यही तरतीब है हमारे दीन की। जब तक आप सुनते नहीं, आप सुनाने के काबिल नहीं होते, और जैसा आज सुनेंगे कल वैसा ही सुनाएंगे। तो यहाँ मुद्दसर सूरत जो तरतीब के एतबार से 74, 74 और आयते हैं इसकी 56, इसमें हम देखेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरीज़ इकामत दीन कैसे किया। लफ्ज़ कौम के अंदर आप इसको ढूंढिएगा जो हम इस बारे में ढूंढ रहे हैं कि कैसे अल्लाह ने आपको मुझे इस चीज़ का हुक्म दिया है कि सिर्फ ये इल्म किताबों में न रह जाए बल्कि ये कारी नज़र आता है हकीकत में है कुरान, इसकी मिसाल बन जाए। और ऐसी सूरते पढ़ते वक्त आप भी चुपके चुपके अल्लाह ताला से दुआएं मांगा करें कि ऐ मालिक हमें भी इस काम के लिए खड़ा कर ले। याद रखिए ये इतना बड़ा काम है, ये रॉयल जॉब है, शाही जॉब है जो ऐसे ही नहीं मिलती। इसके लिए बड़ी स्पेशल क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं। दुनिया की डिग्रियों में तो आपकी शायद सीवीज देखी जाती हैं और आपके तजुर्बे और आपके इल्म को देखा जाता है। इस रास्ते में अल्लाह ताला आपके दिल और आपकी तड़प को देखता है। दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो आपको ये काम करने दे अनलेस ये कि आप ख़ुद इस काम के लिए अल्लाह से तड़प कर मांगिए। आइए इसमें से अमल की बातें लेते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़ानज़िर व रब्बक फ़कब्बिर वसियाबक फ़तौखिर व रुज्ज़ फ़हजुर वला तमनुन तस्तकसिर। ऐसे लगता है कि एक सीरीज है चेन ऑफ गुड मैनर्स। दावत इल्लाह के लिए निकलने वालों का किरदार कैसा होना चाहिए। ए कपड़ा उड़ने वाले, खड़ा हो जा और आगाह कर दे और अपने रब ही की बड़ाइयाँ बयान कर, अपने कपड़ों को पाक रखा कर, नापाकी को छोड़ दे। क्या खूबसूरत मैनर्स है। दीद का काम करने वाले को दिल को भी पाक रखना है, जिस्म को भी पाक करना है, नज़र को भी पाक रखना है और उसकी ज़िंदगी का मकसद रबारा बक फकब्बिर होता है। और एहसान करके ज़्यादा लेने की ख्वाहिश न कर और अपने रब की राह में सब्र कर, बस जब सूर में फूक मारी जाएगी तो वो दिन बड़ा ही सख्त होगा जो काफिरों पर आसान न होगा। मुझे और उसे छोड़ दे जिसे मैंने पैदा किया। सोचिए ज़रा अल्लाह ताला क्या खूबसूरत तरीके से आपको मुझे क़यामत के दिन की तरफ लेके जाते हैं। तब देखिए कि सूरत के आगाज़ में ही खबरदार करने वाले, जिसको वार्नर कह लीजिए, जिसको दाई अल्लाह कह लीजिए, कल तो वो अल्लाह के नबी थे लेकिन क़यामत तक के लिए हर उस बंदे को जिसके दिल में ये शौक़ है कि अल्लाह ताला मुझसे ये काम ले उसमें क्या खूबियाँ होनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो देखिए कि राहत और आराम को छोड़कर लोगों को ख़बरदार करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप हो ढीले ढाले और आराम पर रस्त और ऐश कोश हों और सुस्ती आपके अंदर हो और आप इस काम का हक दे सकें। ये नहीं हो सकता। ये हफ्ते में एक दफ़ा करने का काम नहीं है, ये ट्वाइस अ वीक काम नहीं है, इल्ला ये कि ये रास्ते बनते जाएं और एक लम्हा एक से एक करते करते ये आपकी ज़िंदगी का फुल टाइम काम बन जाए। फिर अल्लाह ताला की असमत और किबरियाई का बयान जुबान से और अमल से, ये कैसे है? इसी को तो आजकल हम देख रहे हैं। ये है असल में वरब्बक फकब्बिर, निकलो तो रब का नाम बड़ा करने के लिए निकलो, अपने नामों के लिए नहीं, अपने ग्रोहों के लिए नहीं, किसी इंसान के लिए नहीं। हकीकत यह है कि अगर ये काम एक इंसान कर जाए कैसे करेगा? पहले तो अपने जिस्म पर कायम करके देखेगा कि जिस्म अल्लाह ने दिया, इस पर मर्जी भी उसी की चलेगी। फिर आप इसको अपने घर पे लागू करेंगे, अपने बच्चों पे करेंगे, अपनी खुशी गमियों में करेंगे, होते होते फिर मुल्क और मुल्क से फिर दुनिया में इसको फैलाएंगे। मुराद ये कि सब जगह अपने रब के नाम के झंडे गाड़ दो, और जितनी ज़्यादा एक इंसान इस चीज़ की ख्वाहिश रखेगा अल्लाह उससे ये काम उतना ही लेगा। फिर तीसरी चीज़ देखिए लिबास और किरदार की पाकीज़गी। लिबास तो हर एक का ही पाक रहना चाहिए, लेकिन अगर दीन के नाम पे निकलने वाले का लिबास गंदा हो, पसीने की और सिगरेट की स्मेल हो और कई रंग के खानों की खुशबू हो, तो दूसरे लोग आपको एक महज़ब इंसान नहीं समझेंगे। खुद भी आप जानते हैं कि जब आप साफ़ सुथरे हो जाते हैं, शावर लेकर साफ सिंपल कपड़े पहनते हैं, तो आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी आती है। इसमें तकल्लुफ़ भी नहीं होना चाहिए, तसन्नो भी नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल इसमें केयरलेसनेस भी ना हो कि किसी दूसरे को आप इस चीज़ की खबर दे रहे हैं कि दीन सीखने के बाद लोग इतने बुखला जाते हैं कि फिर उनका हाल हुलिया भी दुरुस्त नहीं रहता। दूसरी चीज़ जो है ना, किरदार की पाकीज़गी, ये बड़ी अहम है। देखिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा हम पढ़कर आए। बादशाह पैगाम दे रहा है कि मेरे पास भेजिए। बादशाह ने बुलवाया, आइए। कह रहे मैं नहीं आऊँगा। क्यों? पहले मेरे ऊपर लगा हुआ ये इल्ज़ाम धोइए, क्योंकि अल्लाह ने कल उनसे काम लेना था अपने दीन का। अगर बिलफर्ज़ मोहाल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उसी इल्ज़ाम के साथ वापस जेल से निकाल कर बादशाह के पास लाए जाते, कभी भी उनके पास वो कॉन्फिडेंस ना होता। पहले बेगुनाही साबित की गई, सब औरतों ने बरमला ऐलान किया, फिर अल्लाह ने हज़रत यूसुफ़ को बड़ी इज्जत के साथ मिस्र के तख्त पर बैठने का मौका दिया। आपके मेरे लिए इसमें बहुत ही बड़ी बात है। 10 बातें कहने को दिल कर रहा है, किसी को चुप कर चाहिए, क्योंकि आपने एक कहनी है ना, अगले ने कहना, ये होते हैं दीन वाले, ये सिखाती हैं तुझे, ये है तेरी टीचर। यानी ताने इल्ज़ाम जो कुछ लोग देंगे, हर हाल से हर दाइये दीन को ख़ास तौर पे अपने किरदार को माली मामलात में, ज़ुबानी मामलात में, कल्बी मामलात में बिल्कुल पाक रखना चाहिए। इमाम बुखारी का एक वाक़ा, एक मौके पे उन्होंने सिर्फ इस एक इल्ज़ाम से बचने के लिए कि उन पे चोरी का इल्ज़ाम ना लग जाए, 1000 अशरफियों की थैली पानी में डाल दी थी। तलाशी लेने पर जब ना मिली और वो शख्स जिसने इल्ज़ाम लगाया था बाद में मिला और कहने लगा, आपके पास थी नहीं तो आपने क्यों कहा? कहने लगे, मेरे पास थी, पर जब मैंने देखा तेरी नीयत बदल गई और तूने शोर मचा दिया कि मेरे पैसे गुम गए, तो जब लोग तलाशी लेते तो मेरे पास तो वो निकल आती। आप मैं उस वक्त किसको बताता कि ये तेरी है कि मेरी? तो मैं हदीस का काम करता हूँ, लोग मुझसे अल्लाह के नबी की हदीस लेते हैं। अगर मेरे पर एक बार चोरी का इल्ज़ाम लग जाता तो फिर मैं कभी भी इस काम को कर ना सकता। तो उन्होंने तो 1000 अशरफियाँ पानी में फेंकी ना। आप अपनी अना, अपनी तकब्बर और अपनी बातें और ग्रजिस गुस्से सिर्फ इसलिए फेंक दिया करें कि कोई बात नहीं, मेरा अब तारुफ कुरान बन चुका और अल्लाह के नबी की बात। फिर इसी तरह देखिए, शिर्क और नफ्स परस्ती की गंदगी से दूर रहना चाहिए। अगर दिल में आपके अपने ही ये चीज़ें नहीं हैं और आपके दिल में शिर्क से नफरत नहीं है और आप अपनी ही ज़ात के बुत को पूज रहे हैं, तो दूसरों को आप कौन सा दीन देंगे? ये तो ऐसे ही है कि साफ जमजम आप गंदे ग्लास में डालकर किसी को सर्व करने लगे। और फिर सबसे बड़ी बात कि मुश्किलों पर सब्र और अल्लाह ताला से अजर की उम्मीद, क्योंकि इस रास्ते में मुश्किलात तो आती हैं, इसलिए तो कह दिया था पीछे भी वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात। तो इसमें फिर मदद किससे मांगनी है? वली रब्बी का फसबिर। आप देखिए, एक होता है सब्र करना और अल्लाह से मदद मांगना, इधर ये वो मुराद नहीं है। ली रब्बी का फॉर योर अल्लाह, अल्लाह के लिए सब्र ये होता है कि आपका ज़ाती किसी से कोई झगड़ा गिला नहीं, लेकिन लोग आपको अल्लाह के नाम पे सताएं तो आप उस पे सब्र कीजिए। फैज़ा नुकिरा फिन्नाकूर, आप देखिए फिर इसमें क़यामत की कुछ बातें थी। अब आगे है आयत नंबर 11 में, देखिएगा एक और मामला। यहाँ असल में एक किरदार है, नाम नहीं लिया गया, लेकिन वलीद बिन मुग़ीरा नाम का एक बहुत बड़ा सरदार था। तो मक्का वालों ने उसको अल्लाह के नबी के पास भेजा कि ज़रा जाकर देखें, जैसे लोग कहते हैं ना किसी समझदार को भेजते हैं, ज़रा देख कर आएँ वो कैसे लोग हैं, रिश्ता करें ना करें। तो ये आया था, तो ये असल में खालिद बिन वलीद के बाप भी थे, लेकिन आप देखिए थोड़ी देर के लिए इसके दिल में ईमान की चमक आई थी, मुतवज्जे हुआ था, लेकिन इसकी दौलत ने और इसकी रिवायात ने और ख़ानदान की परस्तिश ने इसके पाँव पकड़ लिए। अल्लाह ने इसका एक एक एक्शन इन आयतों में आगे बयान किया जो हम पढ़ने लगे हैं। आज कह लीजिए हर वो उस बंदे पर ये आयतें फिट होती हैं जो इस खसूसियात का मालिक हो, कि दूसरों को भी दीन से बदजन किया, खुद भी रुका, लीडर था, अगर मान जाता तो बहुत सारे लोग इसके पीछे चलते, लेकिन इसने अपनी अना की खातिर दूसरों को भी इस्लाम से और इस नबी से दूर कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते फजरनी, बस मुझे और इसको छोड़ दीजिए जिसे मैंने अकेला पैदा किया है और इसे बहुत सा माल दे रखा है। और हाजिर बाश बेटे, कहते हैं इसके शायद 11 या 12 बेटे थे, बड़ा मान होता है बेटों वालों को, और इसे बहुत कुछ कुशादगी दे रखी थी, फिर भी इसकी चाहत है कि मैं इसे और ज़्यादा दूँ, यानी हिरस है कि खत्म ना हो। याद रखिए कि जब इंसान दुनिया के असबाब के अंदर खो जाता है ना, तो जितना भी मिल जाए कम लगता है। अल्लाह के नबी ने सच फरमाया कि इब्ने आदम का पेट नहीं भरता। अगर इसको सोने की एक वादी दे दी जाए तो ये दूसरी की भी ख्वाहिश करेगा। तो खुशहाल जिंदगी, मालो दौलत, मददगार औलाद, कसरत दुनिया, ये सब दुनिया की चीज़ों के असबाब हैं। ये ख्वाहिशों का धोखा है कि बंदा फिर इसके बाद मजीद दुनिया चाहता है और आखरत में निजात और बुलंद मर्तबों का भी लालच रखे। तो हकीकत यह है कि अल्लाह का अजर इंसान को जो आखरत में दिया जाएगा ईमान वालों के साथ और ईमान और अमल साले के साथ मशरूत है। यानी जब ईमान और अमल होगा फिर ये सारी चीज़ें नेमते हैं, और ईमान और अमल के बगैर ये सारी चीज़ें फितने बन जाते हैं। नहीं, वो हमारी आयतों का मुखालिफ है। अन करीब मैं इसे एक सख्त चढ़ाई चढ़ाऊंगा। इसने गौर करके तजवीज़ की, इसे हलाकत हो। कैसी तजवीज़ सोची? फिर वो गारत हो, किस तरह अंदाज़ा किया? इसने फिर देखा, फिर तेवरी चढ़ाई और मुंह बनाया, फिर पीछे हट गया और गरूर किया और कहने लगा, ये तो सिर्फ जादू है जो नकल किया जाता है, सिवाय इंसानी कलाम के ये कुछ भी नहीं। यानी कुरान के मेयार को या इसके मुकाम को कम करने की कोशिश करते हैं लोग इस तरह के जुमले बोल के कि कोई खास बात तो नहीं है, बस ये ऐसी ही बातें हैं। फरमाए, मैं करीब इसे दोजख में डालूंगा, और तुझे क्या खबर के दोजख क्या चीज़ है? ला तुबकी वला तज़र, ना वो बाकी रखती है ना छोड़ती है, खाल को झुलसा देती है, और इसमें 19 फरिश्ते मुकर्रर हैं। हमने दोजख के दारोगे सिर्फ फरिश्ते रखे हैं, और हमने इनकी तादाद सिर्फ काफिरों की आजमाइश के लिए मुकर्रर की है, ताकि अहले किताब यकीन कर लें और ईमानदार ईमान में और बढ़ जाएं, और अहले किताब और मुस्लिम शक न करें, और जिनके दिलों में बीमारी है वो और काफिर कहेंगे कि इस बयान से अल्लाह तआला की क्या मुराद है। इसी तरह अल्लाह तआला जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है हिदायत दे देता है। तेरे रब के लश्करों को इसके सिवा कोई नहीं जानता। ये तो कुल बनी आदम के लिए सरासर नसीहत है। सच कहता हूँ कसम है चांद की और रात की, जब के वो पीछे हटे और सुबह की, जब के वो रोशन हो जाए, कि यकीनन वो जहन्नम बड़ी चीज़ों में से है। यानी उसको छोटा न समझो। बनी आदम को डराने वाली, यानी इसे जो तुम में से आगे बढ़ना चाहे या पीछे हटना चाहे, हर शख्स अपने अमाल के बदले में गिरवी है, मगर दाएं हाथ वाले अहले जन्नत बाला खानों में बैठे वो सवाल करते होंगे जहन्नमियों से। सवाल सुनिएगा, मा सलककुम फी सकर, तुम्हें दोजख में किस चीज ने डाला? वो जवाब देंगे, और इस जवाब को आप और मैं भी सोच लें, अगर अभी तक हमारी नमाजें पुख्ता ना हो सकी। और वो जवाब बहुत बड़े बड़े नहीं, बल्कि कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजियों में से न थे, न मिस्कीनों को खाना खिलाते थे, और हम बहस करने वाले इनकारियों का साथ देकर बहस मुबाहसे में मशगूल रहा करते थे, और रोज़े जजा को झुटलाते थे, यहाँ तक कि हमें मौत आ गई। बस इन्हीं सिफारिश करने वालों की सिफारिश नफा न देगी। इन्हें क्या हो गया कि नसीहत से मुंह फेर रहे हैं? फमा लहुम अने तज़किरती मोरे दीन कान्नहुम खुमरुम मुस्तनफिरा, गोया के वो जंगली गधे हैं। आप देखिए कि जहन्नमियों को यहाँ कुछ इकरारे जुर्म करवाए जा रहे हैं। मा सलककुम फी सकर, और सकर जहन्नम की एक वादी का नाम है, एक दर्जा है वहाँ का। तो जुर्म जो थे उसको ज़रा एक चेक लिस्ट की सूरत में दोहरा लीजिए। नमाज अदा न करना, मिस्कीन को खाना न खिलाना, बेहुदा मजाक करना, बहस मुबासे करना, यानी दीन के नाम पे लोगों को मजाक सूझते हैं। इसी तरह रोज़े जज़ा का इनकार और हक को छुटलाना, शिफात और सिफारिश न करना, तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक शख्स को मुजरिम बनाती हैं। अल्लाह ताला कहते हैं इनको नसीहत अच्छी नहीं लगती थी, गोया कि वो बितके हुए गधे हैं जो शेर से भागे हों, बल्कि इनमें से हर एक शख्स चाहता है कि इसे खुली हुई किताब दी जाए। कल्ला, हरगिज़ नहीं, यानी ये नहीं हो सकता। इन्नहु तज़किरा, ये तो एक नसीहत है, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि ये क़यामत से बेखौफ हैं। सच्ची बात तो यह है कि ये कुरान एक नसीहत है, अब जो चाहे इसे नसीहत हासिल करे। और वो इस वक्त नसीहत हासिल करेंगे जब अल्लाह चाहे। ये इसी लायक है कि इससे डरें और इस लायक भी हैं कि वो बख्शे। तो आप देखिए कि इस सूरत में हमने क्या सीखा है कि पहली बात तो एक दाई दीन का किरदार के एहसान करके बदले की ख्वाहिश न रखे, अपने दामन को पाक रखे, अल्लाह के नाम को बुलंद करे, अल्लाह के नाम के झंडे लेकर निकले। फिर इसी तरह अल्लाह ताला की नेमतों का इनकार करने वालों को सजा मिलेगी और जहन्नम के सख्त दिल बेरहम फरिश्ते और ख़ास तौर पर कुछ किरदार यहाँ बताए जा रहे हैं। अबू जहल ने कुछ ऐसी बातें की थी कि जिसका इधर जिक्र कर दिया गया। कहने लगा, अच्छा 19 फरिश्ते 100 के 4-6 को तो मैं ही पकड़ लूंगा, 2 को तुम पकड़ लेना, जस्ट मेक फन मॉकरी। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों का नाम नहीं लेता लेकिन ऐसी हरकतें बता देता है कि जो लोग ऐसे काम आज भी कर रहे हैं तो उनका अंजाम भी वही होगा जो पिछलों का हुआ। फिर इसी तरह एंड पे आप देखिए कि जन्नती और जहन्नमियों में जो गुफ्तगू देखी, ये आपके मेरे लिए एक चेक लिस्ट है। अपने बच्चों को भी और ख़ुद को भी नमाज़ों की आदत डालनी है और इन सब चीज़ों के साथ अपने आप को जोड़ना है। अगली सूरत क़यामत है। सूरत का सिर्फ नाम ही क़यामत नहीं, इसका मौजू भी क़यामत है। ख़ास तौर पर नफ्स लवामा, बंदे के अंदर की क़यामत और दलीलें क़यामत है। अल्लाह ताला ने आपके मेरे अंदर एक चौकीदार बिठा दिया, एक जज बिठा दिया, जिसको आप और मैं ज़मीर कहते हैं, जो हमें हमारी गलतियां सबसे पहले दिखाता है और हमारी नेकियां भी दिखाता है। और यहां से अब आगे नोट कीजिएगा कि आने वाली सूरतें इनका मौजू क़यामत है। सूरत दाहर में जन्नत और अबरार और शाकिरीन का जिक्र है। आगे सूरत मुरसलात आ जाएगी जिसमें जहन्नम के अजाब और मुकज्जबीन और छुटाने वालों का मामला है। अल्लाह ताला आपको मुझे इसके लिए तैयार रहने वाला बनाए। सूरत 75 नंबर की है, 40 आयात है। क़यामत के नाम के साथ जुड़ी हुई ये सूरत आपको मुझे इस दुनिया के अंदर की एक क़यामत यानी गुनाह करके अंदर से ज़मीर नाम की जो चीज़ है उसकी तरफ माइल करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला अक़्सिमु बियौमिल क़ियामा वला अक़्सिमु बिन्नफ्सिल लवामा। नहीं, मैं कसम खाता हूँ। अब देखिए कि लफ्ज़ ला के साथ क़्यामत का लफ्ज़ शुरू हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही मुस्लिम 7310, अबू हुरैरा रावी हैं कि क़यामत कायम न होगी यहाँ तक कि तुम लड़ोगे ऐसे लोगों से जिनके मुंह ढालों जैसे होंगे, और क़यामत कायम न होगी यहाँ तक कि तुम लड़ोगे ऐसे लोगों से जिनके जूते बालों के होंगे। इतनी छोटी छोटी कौमों से मुसलमानों को लड़ना पड़ेगा। ला अक़्सिमु बियौमिल क़ियामा, मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की, और कसम खाता हूँ इस नफ्स की जो मलामत करने वाला हो। कि इंसान ये ख्याल करता है कि हम इसकी हड्डियां जमा करेंगे ही नहीं, हाँ जरूर करेंगे, हम तो कादिर हैं कि इसकी पोर पोर तक दुरुस्त कर दें। बल्कि इंसान तो चाहता है कि आगे आगे ना फरमानिया करता जाए, पूछता है कि क़यामत का दिन कब आएगा, बस जिस वक्त की निगाह पथरा जाएगी। दो बड़ी कसमें, ला अक़्सिमु बियौमिल क़ियामा, एक है क़यामत के दिन की कसम और एक है वला अक़्सिमु बिन्नफ्सिल लवामा। नफ्सिल लवामा के पीछे हम पढ़ के आए हैं 13वें पारे के अंदर। हमने जब नफ्स हमारा की बात की थी तो हकीकत यह है कि दुनिया में इस क़यामत का जिक्र सुनना, दुनिया की हकीकत ना समझने वाला भी मौत का इनकार नहीं करता लेकिन लोग मरने के बाद जी उठने और जजा सजा का इनकार करते हैं। इसी तरह अंदर एक नफ्स लवामा नाम की चीज़ है लेकिन ना मानने वाले को भी मलामत करने वाला नफ्स बदी से रोकता और नेकी पे माइल करता है। ये एक छोटी सी अदालत है जो एक मोमिन के दिल में दुनिया में ही लगी हुई है। जिसने अपने आप को इस अदालत में सुरखरू कर लिया उसके लिए क़यामत का दिन कोई बड़ा भारी नहीं होगा। और ये वो चीज़ है जो अल्लाह ताला ने अंदर रखी। एक बहुत ही मारूफ शख्स है कांट, वो कहता है स्टारी हेवन अबव एंड मॉरल लॉज विद इन, यानी अल्लाह ने इंसान के अंदर कुछ ऐसे लॉज बना दिए हैं कि जो उसको हकीकत में बुरे भले का फ़र्क बताते हैं। इंसान जब तक अपनी इसलाह छोड़ता नहीं है ये नफ्स काम करता रहता है। जब लोग इसकी बात सुनना छोड़ देते हैं तो ये नाराज़ हो जाता है और उसके बाद फिर इंसान ऐसा गंदगी में पड़ता है कि पीछे चला जाता है। फिर आप देखिए कि यहाँ पोरों की बात हुई, फिंगरप्रिंट्स। 1880 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था हेनरी फोर्ड, उसने ये डिस्कवर किया था कि हर बंदे का फिंगरप्रिंट असल में उसका सिग्नेचर है। और कुरान में 1400 साल पहले से ये पता है, अंगूठा लगाकर आज भी कई ऐसी चीज़ें हैं। पहले तो लोग अंगूठा लगाते थे किंक लगाकर, आज आप देखिए तो बायोमेट्रिक शायद कहते हैं इसको। दुनिया में बड़े बड़े बैंकों के अंदर सिर्फ आपके अंगूठे से ही ये सारे काम होने लगते हैं। तो ये अल्लाह ताला की सुन्नत है कि लोगों को हर दौर में हैरान करता जाएगा। अब असल में आगे जो क़यामत इसका मौजू है उसका तذکرہ किया जा रहा है कि देखो वो क़यामत छोटी चीज़ नहीं है, वो कैसे होगी, क्या हालात होंगे। आयत नंबर 8, व खसफल कमर व जुमिया शम्स वल कमर यकूल इंसान यौम इज़ ऐन अल मफर। और चांद बेनूर हो जाएगा और सूरज और चांद जमा कर दिए जाएंगे। इस दिन इंसान कहेगा कि आज भागने की जगह कहाँ है। नहीं नहीं कोई पनाह नहीं, आज तेरे परवरदिगार की तरफ ही करारगाह है। आज इंसान को इसके आगे भेजे हुए और पीछे छोड़े हुए से आगाह किया जाएगा। युनब्बाउल इंसान यौम इज़िम बिमा कद्दम वअख्खर बलिल इंसान वला नफ्सिही बसीरा। क्या पता चला, क़यामत तो आनी है और लोग जब इस क़यामत का इनकार करते हैं तो फितनों में डल जाते हैं। लोग क्यों इस क़यामत का इनकार करते हैं और क्यों इससे दूर रहते हैं, उसकी वजह क्या है कि लोगों को ये अंदाज़ा तो हो ही जाता है। बस लोग सोचते हैं कि अगर हमने क़यामत को मान लिया ना तो फिर हमारा हिसाब होगा, और अगर नहीं मानेंगे ना तो कोई हिसाब नहीं। तो याद रखिए कि जब फिक्र आखिरत नहीं रहती, कुरान और सुन्नत से दूरी होती है, दुनिया का धोखा दिमाग पर सवार होता है और शैतान पूरी तरह हम पे मुसल्लत होता है, इसी तरह गैर संजीदा सोच होती है, फिक्री गुमराही आने लगती है। जब इंसान अहकाम शरीयत और फ़राइज़ से नावाकफियत का इजहार करे, मकसद हयात से गाफिल हो जाए, नफसानी ख्वाहिशात और हुब्बे दुनिया और माल में पड़ जाए, और सबसे बढ़ के आखिरत में जवाबदेही के एहसास से गफलत में चला जाए, तो वो इस फितने का शिकार हो जाता है। और वो फितना क्या है कि इंसान इस दुनिया में गैर जिम्मेदारी से जीता है और सोचता है कि क़यामत नहीं आएगी। हालांकि फरमाया, बल्कि इंसान खुद अपने ऊपर हुज्जत है, अगरचे कितने ही बहाने पेश करे। ऐ नबी, आप कुरान को जल्दी याद करके अपनी ज़ुबान को हरकत न दें। इसका जमा करना और आपकी ज़ुबान से पढ़ना हमारे ज़िम्मे है। इब्तदाई दौर की आयतें हैं कि जब अल्लाह के नबी पर वही की कैफियत होती तो अख़्स नहीं होता था। ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे नया नया सीखने वाला कलम भी नहीं पकड़ सकता, अभी बात कर रहे हैं तो आगे से आगे जा रहा है, और इस तरह की कुछ कैफियात हैं। बहुत ही नेचुरल सी फीलिंग्स हैं इनको पढ़ने के बाद कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के अख़्स की जो कैफियत थी वो कैसी थी। अपने हालात पे क्यास करते हुए मुस्कुरा कर सुनिए कि जब मुझे भी सीखने में, कभी सुनने में, कभी आगे पीछे होने में, कभी मुझे परेशानी का कोई इजहार होता है मेरे ऊपर, तो अल्लाह ताला उस वक्त मुझे भी देख रहा होता है। याद रखिए कि सीखने सिखाने के रास्ते में जो मुश्किलात आप सहते हैं ना, कोई भी किसी किस्म की, मैं बोलने में मुश्किल में हूँ, कोई मेरी बात को आगे ले जाने में मुश्किल में है, अगर आपको क़यामत में अजर का यकीन ना हो तो आप कभी भी ना करें। इसीलिए फरमाया है नबी, कुरान को जल्दी याद करने के लिए अपनी ज़ुबान को हरकत ना दें। इसका जमा करना और आपकी ज़ुबान से पढ़ना हमारे ज़िम्मे है। हम जब इसे पढ़ा लें तो आप इसके पढ़ने की पैरवी करें। वइला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तकर। उस रोज़ जाना तो परवरदिगार के पास है। अब देखिए कि जब इंसान को ये यकीन आ जाता है ना कि मैंने जाना अल्लाह के पास है, तो हर इंसान जान लेगा जो आगे भेजता है और जो पीछे छोड़ा, यानी जो अमल छोड़े सदका जारिया, वो अच्छे सदका जारिया भी हो सकते हैं, वो बुरे भी हो सकते हैं। और इस दिन इंसान खुद अपना गवाह बनेगा, उजर बहाने पेश करेगा, मगर इसके अज़ा इसके खिलाफ गवाही देंगे। इसीलिए यहाँ वही इलाही के अख़्स में अल्लाह के नबी को बताया जा रहा है कि ये कुरान ही वो चीज़ है जो लोगों के दिल में फ़िक्र आखरत डाल देगी। फरमाया, फिर इसका वाज़े कर देना हमारे ज़िम्मे है। नहीं नहीं तुम जल्दी मिलने वाली दुनिया की मोहब्बत रखते हो। ये कौन कह रहा है जो आपकी मेरी पोर पोर से वाकिफ़ है? माँ बच्चे को इतना जाने तो माँ को पैदा करने वाला रब ना जाने। इसलिए याद रखिए कि इंसान की असल जो है वो अल्लाह ने बता दी, कल्ला बल तुहिब्बू नल आजिला व तजरू नल आखिरा। तुम जल्दी जल्दी मिलने वाली दुनिया की मोहब्बत रखते हो। बात तो सच है, किसी की बड़ी गाड़ी देकर एकदम आंखें तो खुलती हैं, किसी का बड़ा घर देकर हाव भाव तो लोग करते ही हैं, लेकिन क्या फ़ायदा उस दुनिया की जन्नत का कि जिसके बाद रब ही भूल जाए। हाँ, दुनिया की नेमत है अगर अल्लाह की मोहब्बत और सारे फ़राइज़ की जिम्मेदारियों के साथ मिले। फरमाए, तुम आखिरत को छोड़ देते हो। हम खुद से पूछे, क्या मैंने तजरून अल आखिरा तो नहीं किया हुआ? इस रोज़ बहुत से चेहरे तरोताज़ा और बारौनक होंगे, अपने रब की तरफ देखते होंगे, और कितने चेहरे उस दिन बद रौनक और उदास होंगे। वजूह हुई यौम इज़ नादिरा इला रब्बिहा नाज़िरा वजूह हुई यौम इज़ बासिरा। बासी चेहरे, बद रौनक, उदास, रिग्रेट हो रहा है, और समझते होंगे कि इनके साथ कमर तोड़ देने वाला मामला किया जाएगा। नहीं नहीं जब रूह हंसली तक पहुंचेगी और कहा जाएगा कोई झाड़ फूंक करने वाला है और जान लिया इसने कि ये वक्ते जुदाई है। कभी कोई प्यारा दुनिया से गया हो ना, उस मंजर को सामने ले आइए, किसी को डेथ बेड पे देखा हो, और पिंडली से पिंडली लिपट जाएगी। कमजोरियों का वक्त है, जान पांव से निकलना शुरू होती है। दुनिया का आखिरी दिन आखिरत का पहला दिन बन जाता है, और पहला ही दिन बेबसियों की दास्तान बनती हुई कहानी दिखती है इसमें। आप देखिए, पहले ताकत खत्म होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जुबान बंद होती है, फिर आंखें बंद, फिर कान बंद, और फिर मलकुल मौत ले जाते हैं उसको। दीन की तरफ तो ना आया, मौत की तरफ आ गया। ये है आपके मेरे साथ होने वाला एक मामला, और एक दिन ऐसा होगा, एक दिन जब ये मामला होंगे उस वक्त कुछ नहीं कर सकेंगे। आज कीजिए, अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस को ये यकीन दिलाइए कि हम चले जाएंगे। हम जितना आमाल को और अच्छी चीज़ों को डिले करते हैं ना, उतना हम अपनी मौत के करीब जा रहे हैं। हर दिन मौत है, और अगर पहले से पता होता तो शायद उससे चंद दिन पहले तौबा करते। अल्लाह ने इसीलिए नहीं बताया, बल्कि फरमाया कि अब तो पीछे नहीं आगे का सफर है। इला रब्बी का यौमइज़िनिल मसाक, आज तेरे परवरदिगार की तरफ चलना है। इसने ना तो तस्दीक की, ना नमाज अदा की, बल्कि झुटलाया और उगर्दानी की, फिर अपने घर वालों के पास इतराता हुआ गया। अफसोस है तुझ पर, हसरत है तुझ पे, वाह है और खराबी है तेरे लिए। क्या इंसान ये समझता है कि इसे बेकार छोड़ दिया जाएगा? क्या वह गाढ़े पानी का कतरा न था जो टपकाया गया था, फिर लहू का लोथड़ा हो गया, फिर अल्लाह ने इसे पैदा किया और दुरुस्त बनाया, फिर इससे जोड़े यानी नर मादा बनाए? क्या अल्लाह ताला इस बात पर कादिर नहीं कि मुर्दे को जिंदा करे? तो कहिए कि बला वा नाला ज़ालिका मिनश शाहिदीन, अल्लाह ताला आप इन सारी चीज़ों पर कादिर हैं और हम इसके गवाह हैं। क्या खूबसूरत सूरत है, कारी मिशारी ने इसको बहुत ही खूबसूरत पढ़ा हुआ, और एक वीडियो में क्लिप भी है कि जिसमें साथ उर्दू और इंग्लिश ट्रांसलेशंस भी हैं। कभी बैठ कर इन सूरतों का सिर्फ तर्जमा सुनिए, और तिलावत के साथ गौर कीजिए कि जो इन सूरतों में कहा जाता है आज कितने लोगों को समझ आता है। अल्लाह ताला हमें इन पे गौर व फिक्र करने वाला बना दे। तो सूरत क़यामत में क्या सीखा कि हम सब अपने आमाल का खुद आयना है। लिख लेंगे जिम, हम सब अपने आमाल के खुद आयने हैं। इसी आईने में देख लीजिए कर क्या रहे हैं। फिर इस तरह हिफ्ज़े कुरान हो या तिलावत और तफसीर हो, इसका जिम्मेदार खुद अल्लाह ताला, वरना कोशिश करता अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है। कितने ही चेहरे उस दिन बेरौनक होंगे, रिग्रेटफुल कौन, जिन्होंने दौरे कुरान से फ़ायदा नहीं उठाया। अब देखिए, सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों लोग इस दौरे कुरान से इंशाल्लाह फ़ायदा लेंगे, ये मैं आपको बता दूँ। लेकिन जो आपका मुकाम था, जिन्होंने मुझे ये पढ़ने पर तैयार किया, जो मेरे साथ बैठे इतने सुकून से, घरों में बैठकर सुने या बात में, जैसे भी जिस जगह, आपका जरब कोई नहीं पा सकता। जैसे सहाबा कराम वही का हिस्सा बन गए थे ना। अब आज और मैं और आप तो वो कुरान पढ़ते हैं, सहाबा के सामने उतरता था, या सलूना का के सवाल थे सहाबा के उसमें। तो जब आपको एक अल्लाह ने मौका दिया और आपने उसको अवेल किया, जिसने नहीं किया उसके चेहरे पे कभी चमक नहीं आएगी। कभी आपने खुदा न खास्ता कोई क्लास मिस की और बाद में रिकॉर्डिंग सुनी हो ना, तो आपका दिल आपको गवाही देगा। जो उस वक्त सकीना थी, जो उस वक्त फरिश्तों का नजूल था, और जो दुआओं का हसूल था, ये बाद में नहीं रहता। फिर इस तरह मौत और सकरात की कैफियत सख्त होगी, इतना हल्का ना जानिए। रिवायत में आते 500 साल बाद भी एक शख्स को जिंदा करके पूछा गया तो उसको मौत की कड़वाहट महसूस हो रही थी। और अफसोस, इंसान दुनिया में भूला बैठा है और हम समझ ही नहीं पाते। आगे सूरत अल इंसान है, जिसको सूरत दहर भी कहते हैं। 76 नंबर की सूरत है, 31 आयात है। देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जन्नत की नेमतों का जिक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल ताल अल इंसानि हीन मिन दहरि लम यकुन शय्यम मस्कूरा। इन्ना खलकना अल इंसान मिन नुत्फतिन अमशाजिन नबतलीही फजअलनाहु समीअम बसीरा। इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। कभी गुजरा है इंसान पर एक वक्त जमाने में जब कि वो कोई काबिले जिक्र चीज न था। बेशक हमने इंसान को मिले जुले नुतफे से पैदा किया इम्तिहान के लिए, और इसको सुनता देखता बनाया। हमने इसे राह दिखाई, अब ख्वाह वो शुक्र गुजार बने ख्वाह ना शुक्रा। यकीनन हमने काफिरों के लिए जंजीरें और तौक और शोलों वाली आग तैयार कर रखी है। बेशक नेक लोग वो जाम पियेंगे जिसकी आमेजिश काफूर की होगी। अल्लाह अकबर। अब देखिए कि ये दुनिया और इसमें इंसान, इसके बारे में मुख्तलिफ अकवाम के दुनिया में मुख्तलिफ नजरियात हैं। मसलन राहिब कहते हैं कि दुनिया दारुल अजाब है, यानी उनके लिए दुनिया ही अजाब है। इसका खाना पीना, बच्चे, गाड़ी, सब वो कहते हैं हम एक अजाब की जिंदगी में, इसलिए इससे जान छुड़ाओ और जंगलों में चले जाओ। मदभ्रष्ट लोग यानी मटीरियलिस्टिक अप्रोच रखने वाले कहते हैं एक तफरीक है, फन प्लक्स है जी, यहाँ आइए एंजॉयमेंट कीजिए, एंटरटेनमेंट, और उसके बाद जाइए, दैट्स इट, मरे और मट्टी। इसके अलावा तनासिख के कायलीन है। तनासिख क्या, ये एक अकीदा है जिसमें वो कहते हैं कि सब मनसूख हो जाएगा बाद में। वो कहते हैं दुनिया दारुल जजा, यहीं अच्छी बुरी बातों का बदला मिल जाता है, बाद में कुछ नहीं होगा, अल्लाह ने हकीकत बता दी। और वो क्या है, नबतली ही हम आजमाइश के लिए भेजते हैं। तो हकीकत यह है कि दुनिया इम्तहान गाह है। सूरत के शुरू से, पारे के आगाज़ में हम देख रहे हैं, सूरत मुल्क के आगाज़ से ये हकीकत बताई जा रही है। अब आगे जन्नत की नेमतों को ज़रा तसव्वुर की आँख से देखिएगा। आई नहीं यशरबु बिहा इबादुल्लाह युफज्जिरू नहा तफजीरा, जो एक चश्मा है जिसे अल्लाह के बंदे पियेंगे, इसकी नहरें निकाल ले जाएंगे जिधर चाहें। कौन से बंदे, क्या खूबियां थीं, जो नजर पूरी करते हैं और इस दिन से डरते हैं जिसकी बुराई चारों तरफ फैल जाने वाली है। सोचिए, हमने तो कुछ नजरें नहीं छोड़ी हुई ऐसी जो पूरी ना की हों। और अल्लाह तला की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं मिस्कीन, यतीम और कैदियों को। हम तो तुम्हें सिर्फ अल्लाह तला की रजामंदी के लिए खिलाते हैं, ना तुमसे बदला चाहते हैं ना शुक्रगुजारी। ये कौन करेगा जिसको वाकई अल्लाह से मोहब्बत होगी। एक तो इस आयत को हम समझना गरीबों के लिए और मिस्कीनों को खिलाना और फिर एहसान न जतलाना, वो तो एक अलग बात है। मेरा नहीं ख्याल आप में से कोई भी ऐसा होगा कि जो इन गरीबों को इसलिए दे कि वो आपकी तारीफें करें। लेकिन ज़रा सा सोचिए, जब हम अपनी दोस्तों को खाने खिलाते हैं, जब दावतों में खाने पकते हैं, इफ्तारियों पे खाने पकते हैं, ईद की पार्टियों में खाने पकते हैं, तो उस वक्त क्या चाह रहे होते हैं? कान तो तारीफ सुनने के लिए मुंतजर होते हैं, किसने पकाया, आज कौन लाया। आपको कहता है कि स्कूल में कैंटीन में लोग खाना लेकर आते हैं माशाल्लाह, और वही सेल किया जाता है और फिर वही स्कूल के सारे खर्चे पानी में इस्तेमाल होता है। किसी को इजाज़त नहीं है ये बताने की कि आज का खाना कौन लाया है, वरना तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। आज भी देखिए कि जहाँ तस्किया नहीं होता ना, जब लोग किसी जगह इवन दीन के नाम पर इफ्तारियाँ क्यों ना कराएं, मस्जिदों में क्यों ना डालें, हद तक के मरग पे जो खाने आते हैं, कानों में कहा जाता है आज बुला भाभी के घर से, आज मेरे मैके से खाना आया, आज अब्बा ने भेजा है, ला हौला वला कुव्वते इल्ला बिल्लाह। आज से एक नीयत कीजिए, किसी को कुछ भी खिलाएं, उसमें ये ना नीयत कीजिए या इरादा ना करें, ख्वाहिश तमन्ना भी ना हो कि कोई आपकी तारीफ करे। एक तो तारीफ और दूसरी दुआ, दुआएं लेने के लिए खिला रहे हैं, ये भी एक शिर्क की तरफ चली जाती है बात, कि आपने चूंकि खाना खाया अब आप दुआएं देंगे तो ये दुआएं हमारे हक में कबूल होंगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग गैर महसूस तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देते हैं कि खाने का अजर ज़ाया हो जाए। तो दुआ कीजिए कि हम सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में खिलाएं, और वो खिलाएं जिस खाने से हमें खुद भी मोहब्बत है। इसमें ये भी एक मानी आ जाता है कि लोग अल्लाह के बंदों को अपनी पसंद की चीज़ें खिला देते हैं और खुद भूखे रह जाते हैं। बेशक हम अपने परवरदिगार से इस दिन का खौफ करते हैं जो उदासी और सख्ती वाला होगा, बस इन्हें अल्लाह ताला ने इस दिन की बुराई से बचा लिया और इन्हें ताजगी और खुशी पहुंचाई, और इन्हें इनके सब्र के बदले जन्नत और रेशमी लिबास अता फरमाए। वो वहाँ तख्तों पर तकिए लगाए हुए बैठे होंगे। खुद को इमेजिन कीजिए वहाँ बैठे हुए में, और दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला हमें महरूम ना करना इस खूबसूरत जगह पे दाखिल होने से। ना वहाँ आफताब की गर्मी देखेंगे, ना सर्दी की सख्ती, यानी शिद्दत वाला मौसम नहीं होगा, बड़ा न्यूट्रल, बड़ा प्लेजेंट वेदर होगा। इन जन्नतों के साए इन पर झुके हुए होंगे और इनके मेवे और गुच्छे नीचे लटके हुए होंगे। क्या कोई रिजॉर्ट और क्या कोई बीच होगा जहाँ लोग लेयर मूड में बैठे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जन्नत में ले जाने वाले अमल कौन से हैं? तो क्या देखा, अच्छे कामों को हमेशा का करना, दवाम, ये नहीं कि मर्जी से रमज़ान में, अब रमज़ान गया तो सब ख़त्म और दौरे कुरान पूरा, तो बस अब क्या ज़रूरत है पूछने की कि अब आगे क्या हो रहा है, बस हमने तो रमज़ान की कमिटमेंट की थी और दैट्स इट। याद रखिए, कमिटमेंट आपकी किसी से नहीं है, आपकी खुद से कमिटमेंट है। आप किसी पे एहसान नहीं करेंगे, कोई काम करेंगे अगर, जब तक आप खुद पर एहसान करने के दावेदार और इसके उम्मीदवार ना हो। मैं क्यों ना पढ़ाऊँ रमज़ान के बाद, क्यों मैं सिर्फ रमज़ान के लिए अपने आप से प्यार करती हूँ? तो याद रखिए, हमेशा नेक काम करना, इसकी नियत कीजिए। फिर इसी तरह से नज़रों को पूरा करना, अल्लाह के नाम पर जो जायज़ काम की नज़र मानी है उसको पूरा कीजिए, बंदों से जो वादे कमिटमेंट्स किए हैं उसको निभाइए। फिर इसी तरह अल्लाह की मोहब्बत में यतीम मिस्कीन को खिलाना और उससे कोई बदला और शुक्रिया न चाहना, बिन देखे रब से डरना, उसकी इताअत करना, और जो हमें आखरत की हौलनाकियों से डरना, ऐसे काम करके दुनिया से जाने वालों को अल्लाह ताला क्या करेंगे। वयुताफु अलैहिम बियानियत मिन फिद्दतिन वक्वा बिन कानत कवारीरा, और इन पर चांदी के बर्तनों और इन जामों का दौर कराया जाएगा जो शीशे के होंगे, शीशे भी चांदी के जिनको साकी ने अंदाजे से नाप रखा होगा, और इन्हें वहां वो जाम पिलाए जाएंगे जिनकी आमेजिश जंजबील की होगी। ये क्या है? जन्नत की एक नहर जिसका नाम सलसबील है, और जिसके इर्द गिर्द घूमते फिरते होंगे वो कमसिन बच्चे जो हमेशा रहने वाले हैं। जब तूने देखे तो समझे कि वो तो बिखरे हुए मोती हैं। तू वहां जहां कहीं भी नजर डालेगा सरासर नेमते और अजीम उस शान सल्तनत ही देखेगा। इनके जिस्मों पर सब्ज बारीक और मोटे रेशमी कपड़े होंगे, और इन्हें चांदी के कंगन का जेवर पहनाया जाएगा, और इन्हें इनका पाक साफ शराब पिलाएगा। कहा जाएगा, ये है तुम्हारे आमाल का बदला और तुम्हारी कोशिश की कदर की गई, बेशक हमने आप पर बतदरीज कुरआन नाजिल किया है। जन्नत की नेमतों को पढ़ते वक्त इस बात को दोहरा लीजिए कि दुनिया दारुल अमल है। जिसने दुनिया को दारुल अमल समझा उसके लिए फिर जन्नत की नेमतें होंगी। कैसे? काफूर मिले पाकीज़ा जाम। अब देखिए, लफ्ज़ शराब देखकर या सुनकर पढ़कर हम परेशान होते हैं तो सिंपल सी बात है, शराब बमानी मशरूब, अरबी जुबान में पीने की चीज़ यानी ड्रिंक, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं, उर्दू में हम इसको शरबत कहते हैं, वहाँ उसको शराब कहा गया। बस, क्योंकि दुनिया की शराब क्यों बुरी है? क्योंकि उसमें गंदगी है, बेहूदगी है। वहाँ जब ये कुछ है ही नहीं तो फिर लफ्ज़ शराब से आप क्यों परेशान है? हाँ, फिर इस्तेमाल क्यों किया ये लफ्ज़? इसलिए कि मारूफ था अरब कल्चर में, और हो सकता है वो लोग जो अल्लाह के लिए शराब छोड़े उनको अल्टरनेट दिया जा रहा है, उनको एक इंसेंटिव दिया जा रहा है, यहाँ की छोड़ दो वहाँ मिल जाएगा। फिर आप देखिए कि ऐसे लोगों को काफूर मिले जाम और पाकीज़ा शराब के साथ बड़े ही तैयार किस्म के खादिम है। दुनिया में बाज़ मुलाज़िम इतनी भोंडी तरह से चीज़ पेश करते हैं कि घर वाला शर्मिंदा हो जाता है। कभी बहुत ज़्यादा जूस भर लिया कि नीचे गिर रहा, और बिल्कुल ही आधा गिलास दे दिया। वहाँ ऐसे खादिम होंगे, खूबसूरत, गोल मटोल, साफ सुथरे, फिर चांदी के बर्तन, चांदी के कंगन, रेशम के लिबास, ऊंची मसनदें और मोतदिल मौसम। किसको गर्मी अच्छी लगती, किसको सर्दी अच्छी लगती, का दोनों अपनी बात में सेटिंग करना, हम आपको न्यूट्रल मौसम देंगे। वहाँ साया दर दरख्त होंगे, सुकून, खुशी, ताजगी, और क्या चाहिए? ये सब कुछ जमा कर लिए तो दुनिया जन्नत बन जाती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं, फिर अगर ये सब लेना चाहते हो, तुम्हें इसकी ख्वाहिश है, तमन्ना है, तो फिर क्या कीजिए? फसबिर लिहुक्मि रब्बिका वला तुती मिन्हुमा सिमनौ कफूरा, बस तो अपने रब के हुक्म पर कायम रहे और इनमें से किसी गुनाहगार या नाशुकरे का कहना न मान, और अपने रब के नाम का सुबह शाम जिक्र किया करो, और रात के वक्त इसके सामने सजदे करो, और बहुत रात के तक इसकी तस्बीह किया करो। बेशक ये लोग जल्दी मिलने वाली दुनिया को चाहते हैं और अपने पीछे एक बड़े भारी दिन को छोड़ देते हैं। सोचिए कब याद आता है आखिरी दफ़ा हमें कि वो यौमन सकीला होगा। आज दुनिया के गमों में खोया हुआ इंसान उस आखिरत के गमों को समझ ले तो कभी भी अपने आप को बेनियाज न समझे अल्लाह से और अल्लाह के रास्तों से। आगे अल्लाह ताला अपनी कुछ नेमतों का एहसास दिलाते हैं। नाहनु खलकनाहुम, हमने इनको पैदा किया और हम ही ने इनके जोड़ और बंधन मजबूत किए, और हम जब चाहें इनके इवज इन जैसे औरों को बदल लाएं। यकीनन ये तो एक नसीहत है, बस जो चाहे अपने रब की राह ले ले, और तुम ना चाहोगे मगर ये कि अल्लाह ताला ही चाहे। बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला बा हिकमत है, जिसे चाहे अपनी रहमत में दाखिल कर ले, और जालिमों के लिए इसने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। अल्लाह अकबर, क्या अल्लाह ताला ने आपको मुझे यहाँ खड़ा करके बता दिया कि एक इंसान सोचे कि ये कुरान किस खूबसूरत तरीके से पेश करता है अल्लाह ताला की बातों को, लेकिन हम इससे कितने उखड़े उखड़े रहते हैं। तो सूरत दहर से क्या सीखा? कि इंसान अपने फ़राइज़ को पहचान। तुझे दुनिया में ऐसे ही नहीं भेज दिया अल्लाह ने। फिर जंजीरें, तौक और शोले मुनकरीन का इनाम है। सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए नेकी करने वाले ही असल में शुक्रगुजार हैं, और दायमी खुशगवार मुसर्रतों से भरपूर जिंदगी पाने वाले, वहाँ उनको ऐसे लगेगा कि हम सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं, सिर्फ इंजॉयमेंट। अब देखिए, दुनिया में हम खाना खाते हैं ना तो इंजॉयमेंट नहीं है, भूख है। जब भूख खत्म हो जाती है, खाना खत्म, आपकी पसंद की चीज़ पकी हो, चलिए बच्चे को आइसक्रीम खिलाइए, एक कप शौक से खाएगा, दूसरा खाएगा, तीसरा कहेगा बस मामा कहते खाओ अब और खाओ और खाओ, फिर जब उसके मुंह में एक चम्मच ना जाए तो रो ही ना पड़े। आखिरत की नेमतें भूख मिटाने के लिए नहीं है, जस्ट इंजॉयमेंट, स्नैकिंग और चिट चैट, क्योंकि वहाँ भूख तो लगनी नहीं है। ला तजुआ फीहा, पीछे पढ़ के आए हैं, हज़रत आदम को अल्लाह ताला ने फरमाया था कि अब जो जन्नत मिलेगी उसमें तुम भूखे नहीं रहोगे। तो ज़रूरत है इस बात की कि आज इसके लिए खुशी खुशी अल्लाह की बात मानी जाए। और फिर अल्लाह ताला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहम अहद और मामलात का तذکرہ हुआ। आगे सूरत मुरसलात है, जो पारे की आखिरी सूरत है। भेजी हुई, मुरसलात, मुरसलत उनकी जमा, 77 नंबर की सूरत है, 50 आयात है। आइए देखिए ये कौन है जिनके नाम पे सूरत रखी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल मुरसलाति उर्फा, फलासिफाति असफा, वन्नाशिराति नशरा, फलफारिकाति फरका, फलमुल्कियाति ज़िक्रा, उज़रन औ नुज़रा। कस्में ही कस्में हैं, आप अगले पारों में आप यही अंदाज़ देखेंगे। दिल खुशकुन चलती हुई हवाओं की कसम, फिर ज़ोर से झुका देने वालियों की कसम, फिर अबर को उभार कर परागंधा करने वालियों की कसम, फिर हक और बातिल को जुदा कर देने वाले और वही लाने वाले फरिश्तों की कसम। जब वही इल्ज़ाम उतारने या आगाह कर देने वाली होती है, और जवाबे कसम लीजिए, जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जाता है वो यकीनन होने वाली है। इन्नमा तू अदू नलवाके, क़यामत के आने पे कस्में खाई जा रही हैं। क्या होगा क़यामत में? वैज़न नुजूमु तुमिसत, वैज़स्समाउ फुरिजत, वैलल्जिबालु नुसिफत। बस जब सितारे पे नूर कर दिए जाएंगे, और जब आसमान तोड़ फोड़ दिया जाएगा, और जब पहाड़ टुकड़े टुकड़े करके उड़ा दिए जाएंगे, यानी दुनिया की बसात उलटती जाएगी, जैसे बच्चा खेले और खेल के बाद अपने सारे खिलौनों को समेट कर एक बॉक्स में डाल दे। ये दुनिया खेल तो नहीं थी, लेकिन इसकी हैसियत है तो एक खेल तमाशे की। हम जिन घरों के लिए परेशान हैं, जिन दुनिया की चीज़ों के लिए रोते हैं, इन सब का बिलाखिर ये मामला होगा कि इनको ढेर बना के स्क्रैप बना दिया जाएगा। और जब रसूलों को वक्त मुकर्रर पर लाया जाएगा, किस दिन के लिए इन सब को मौखर किया गया? लियौमिल फसल, फैसले का दिन, क़्यामत का दिन। वमा अदराका मा यौमुल फसल, और तुम्हें क्या मालूम कि वो फैसले का दिन क्या है? वैलुन यौम इज़िल मुकज़्ज़िबीन। गिनते जाइएगा अब इसको, अब कितनी बार आएगा। उस दिन जुटलाने वालों की खराबी है। वैलुन यौम इज़िल मुकज़्ज़िबीन। क्या झुठलाता था इंसान? पहली बात है, मौत के बाद जी उठने को झुठलाता, क़यामत के वाक़े होने को झुठलाता था, और हर अमल के पूरे पूरे बदले को झुठलाता था। कहता था कुछ नहीं होना, देखना मैंने फर्स्ट आना, मुझे नहीं कोई फेल कर सकता, कौन है जो मुझे फेल करे। तो रोज़े क़यामत की हसरत और माजरत से बचने के लिए आज क़यामत का यकीन और इसकी संगीनी का अदराक ज़रूरी है। जो लोग इससे दूर दूर रह कर पहुँचते हैं क़यामत का दिन, उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा। इसीलिए पिछले लोगों पर जो छोटी छोटी क़यामतें टूटी उनका तذکرہ है। फरमाया, हमने पिछलों के साथ क्या मामला किया? अलम नुखलिकिल अव्वलीन, क्या हमने अगलों को हलाक ना किया? फिर हम इसके बाद पिछलों को लाए? हम गुनाहगारों के साथ इसी तरह करते हैं। वैलुन यौमइज़िल मुकज़्ज़िबीन। इस दिन चुटलाने वालों के लिए वैल यानी अफसोस है, जहन्नम की वादी का नाम भी वैल। क्या हमने तुम्हें हकीर पानी से यानी मनी से पैदा नहीं किया? फिर हमने इसे मजबूत और महफूज जगह में रखा, रहमे मादर, मदर्स वोम, योट्रस, एक मुकर्रर वक्त तक। फिर हमने अंदाज़ा किया, और हम क्या खूब अंदाज़ा करने वाले हैं। वैलुन यौमइज़िल मुकज़्ज़िबीन। इस दिन चुटलाने वालों के लिए खराबी है। क्या हमने ज़मीन को समेटने वाली नहीं बनाया, जिंदों को भी और मुर्दों को भी? कैसे ज़िंदगी में भी ज़मीन हमें समेटती है, और कब्रों में डलने के बाद कैसे प्यार से मांग की तरह छुपा लेती है। अगर डेड बॉडीज़ बाहर फिरी हैं और नज़र आएँ, तो उनकी बदबू से ही शायद हमें नफ़रत हो जाए अपने जाने वालों से, जिनके लिए रोते हैं। तो ज़मीन का ये एक बहुत बड़ा एहसान है जो अल्लाह ने उसके नसीब में कर दिया कि वो हमारे जिंदों और मुर्दों को छुपा लेती है। किस तरीके से इंसान कब्रिस्तानों के पास से गुजरता है, लेकिन फिर भी व्रत नहीं लेता। वजालना फ़ीहा रवासिया शामिखातिन वस्क़ैनाकुमा अन्फुराता, और हमने इसमें बुलंद और भारी पहाड़ बना दिए, और तुम्हें सिराब करने वाला मीठा पानी पिलाया। इस दिन झूठ जानने वालों के लिए वाय और अफसोस है। इस दोजख की तरफ जाओ जिससे तुम झुठलाते रहे थे। चलो तीन शाखों वाले साए की तरफ, जो दरअसल न साया देने वाला है न शोले से बचा सकता है। यकीनन दोजख चिंगारियां फेंकती हैं। कितनी बड़ी होती है दुनिया की चिंगारी, जहन में लाइए। और अब जरा जहन्नुम की चिंगारी का तस्करा सुने और सोचिए कि जिसकी चिंगारी इतनी बड़ी है, तो उसके शोले कितने बड़े होंगे। इन्नहा तरमी बिशरर कल कसर कन्नहु जिमालतुन सुफर। यकीनन दोजख चिंगारियां फेंकती है जो मिसल महल के हैं, बड़े बड़े कैसल्स जितनी चिंगारियां, गोया के वो जर्द ऊंट है। आज इन चुटलाने वालों की दुर्गत है। आज का दिन वो दिन है कि ये बोल भी ना सकेंगे, ना इन्हें माजरत की इजाजत दी जाएगी। वैलु यौमैज़िल मुकज़्ज़िबीन। इस इन चुटलाने वालों की खराबी है, ये है फैसले का दिन। हाज़ा यौमुल फ़स्ल जमानाकुम वल अव्वलीन। ये है फैसले का दिन, हमने तुम्हें और अगलों को सबको जमा कर लिया, बस अगर तुम मुझसे कोई चाल चल सकते हो तो चल लो। वाय है उस दिन चुटलाने वालों के लिए, बेशक परहेजकार लोग सायों में हैं और बहते चश्मों में और इन मेवों में जिनकी वो ख्वाहिश करें। ऐ जन्नतियों, खाओ पियो मजे से अपने किए हुए आमाल के बदले। इसको जरा गौर से देखिए, खुलू वशरबू हनीयम बिमा कुंतुम तामलून। बस अगर अमल ही नहीं होंगे तो वहां ये खूबसूरत सी पुकार कौन सुनेगा। हम कहते हैं दुआओं से जन्नत ले लो, ख्वाहिशों से ले लो, नहीं, बिमा कुन तुम तामलून, अमल से जिंदगी जन्नत बनती है जहन्नम बनती है। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। यकीनन हम नेकी करने वालों को इसी तरह जज़ा देते हैं। इस दिन सच्चा न जानने वालों के लिए वैल यानी अफसोस है। ऐ छुटलाने वालों, तुम दुनिया में थोड़ा सा खा लो और फायदा उठा लो, बेशक तुम गुनाहगार हो। आखिर में तो यही सुनना था ना इनको, कितनी भी मौज मस्ती की, आज सुनने को तो यही मिला। वैलु यौमैज़िल मुकज़्ज़िबीन। इस दिन छुटलाने वालों के लिए सख्त हलाकत है। इनसे जब कहा जाता है कि रुकू कर लो तो नहीं करते। इस दिन छुटलाने वालों की तबाही है। फबिअय्यि हदीसिम बादहु युमिनून। अब इस कुरान के बाद किस बात पर ईमान लाएंगे। जरा से इस आखिरी जुमले को देखिए, जो पारे का भी आखिरी जुमला, सूरत का भी आखिरी जुमला। इस कुरान को पढ़ के जिसको हिदायत नहीं मिली उसको क्या पढ़ के हिदायत मिलेगी? जिसको इस कुरान को पढ़ के सुकून नहीं मिला उसको क्या ट्रैंक्लाइजर से सुकून मिलेगा? इस पे बाद में गौर कीजिएगा। इससे बड़ी कोई डिग्री नहीं है। अगर आप और मैं कुरान पढ़कर भी ईमान की बुलंदियों पे ना पहुंचे और अमल ना हुआ और इकामत दीन तक ना पहुंच गए और अपने इस जिस्म पे इस्लाम को, दीन को, अल्लाह की रजा को, उसकी मर्जी को फिट ना किया, तो फिर मान लीजिए कि अब हमारे अंदर इससे ज्यादा दमखम नहीं, बस इतना ही नसीब था हमारा। तो क्या सीखा सूरत मुरसलात से? रिश्तों और हवाओं की कई इकसाम। हसरत और अफसोस का वक्त आने से पहले संभल जाओ। जहन्नुम के शोले स्याह ऊंटों और दहकते तांबे के टुकड़ों की तरह होंगे। दुनिया और आखिरत के फवायद का मवाजना किया गया और एक सवाल पे बात छोड़ दी। फबिअय्यि हदीसिम बादहु युमिनून। अगर कुरान की बात भी ना मानी तो फिर किसकी मानोगे? या ऐसे जैसे माँ बाप कहते हैं कि हमारी नहीं मान रहे तो और किसकी मानोगे? और हकीकत है कि इंसान जब अल्लाह की नहीं मानता तो फिर नफ्स की तो मानता है। तो पारा पूरा अल्हम्दुलिल्लाह देखिएगा, जेम्स गोल्डन वर्ड्स, फिक्रे आखरत और तकवा की जिंदगी गुजारनी है। दुनिया को दारुल अमल ना समझने के फितने के इर्द गिर्द इस पारे को हमने समझा। अहसन अमल और मकसद हयात को समझना है। क्यामत, जन्नत और जहन्नम की बहुत सारी झलकियाँ देखी इस बारे में। शहादत अलन नास और हमारे रात दिन, कहाँ खो गए हम आज के मुसलमान। फिर सब्र जमील और इस्तिग़फ़ार के फ़वाइद देखे और अल्लाह ताला को कर्ज़े हसन देना सीखा। फ़िक्र आखरत और तकवा वाली ज़िंदगी जब होती है ना तो फिर काम बहुत आसान हो जाते हैं। फिर इंसान हर दिन को एक मोती समझता है, एक हीरा समझता है। अब हमारा फितने का मौजू क्या था इसमें कि ज़िंदगी को दारुल अमल नहीं समझते, कमरे इम्तिहान नहीं समझते, इसको फन प्लग्स और पार्टी प्लग्स समझते हैं। तो इसका हल क्या है कि पहले तो इसको फितना समझिए, इसको गुमराही समझिए, इस पे मजीद सीखना है इंशाल्लाह। दुनिया की हकीकत को समझते हुए अपने आप को यकीन दिलाना है कि हमारी दुनिया में आने का मकसद मौज मस्ती और तईशात में वक्त गुजारना नहीं है, और दुनिया की बेसुबाती का यकीन रखते हुए अपनी तरजीहात यानी प्रायोरिटीज को और अपने अहदाफ यानी गोल्स आखरत के हवाले से बनाने हैं, यानी आखरत ओरिएंटेड जिंदगियां बसर करनी है। बेकार और लगवियात को छोड़ना है। वक्त किसके पास है बेकार चीज़ें देखने, सुनने और बोलने का? अपना मकसद हयात याद रखना है और अपनी जिम्मेदारियां आसान तरीके से निभाने के लिए संजीदा होना है। कब्र, आखिरत और नामे अमाल को याद रखते हुए इस दुनिया में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना। अल्लाह तआला के लिए खालिस होते हुए अपना और दूसरों का कुरान से ताल्लुक जोड़ना है अम्बिया अलैहिस्सलाम और सहाबाए कराम की सीरत से वाकफियत हासिल करके इनको अपना रोल मॉडल बनाना है, सालेहीन की सोहबत को अपनाना है और अपना मुहासबा करना है। नेक लोगों का साथ मिल जाए तो इससे नेकियों के रास्ते खुल जाते हैं। इसी तरह हुकूकुल्ला, हुकूकुल इबाद, इबादात, मामलात, अखलाकियात, शहादत अलन्नास, तबलीग और इकामत दीन और सब जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें करनी है, इरादे करने और कोशिशें करनी है, और पिछली ज़िंदगी पर इस्तग़फ़ार और आइंदा ज़िंदगी में इस्तकामत फ़िद दीन और अपनी ज़िम्मेदारियां निभाने के लिए दुआएं करनी है। गोया कि हम अल्लाह को कहते हैं कि मालिक, हम जो अपनी कोशिशों से नहीं पा सके वो हम तुझसे दुआएं मांग कर लेंगे। अल्लाह ताला इस बुरे पारे में की गई गलतियों को माफ़ करे, इसलाह की तौफीक दे और खैर पर हम सब को जमा कर दे। ये बड़ा प्यारा अल्लाह का एहसान है। इसके बाद अब आगे हमारे पास आखिरी सीढ़ी है। ज़रा सा हम इस पर गौर व फिक्र करें, सोचें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें देते हैं और शायद हम उस रहमत को लेने के लिए तैयार होते हैं कि नहीं। अपने आप से पूछिए, देखिए ना कि ये सारा पढ़ते ही जाना और आगे से आगे ही बढ़ते जाना, क्या खजाने हमने आपने नहीं ले लिए? क्या चीज़ें जो आपकी मेरी ज़िंदगी में इस कुरान के सफ़र के दौरान नहीं आई? आपको मुझे इस चीज़ के ऊपर गौर करना है। आप और मैं जितना ज़्यादा इस चीज़ को देखेंगे उतना गौर व फिक्र करेंगे तो फ़ायदा होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको मुझे इसका हक अदा करने की तौफीक दे। थोड़ा सा गौर करें। देखिए हम पढ़ते ही जाते हैं ना, तो बाज़ दफ़ा गौर व फिक्र करना मुमकिन नहीं होता, मुश्किल लगता है। हम कहते हैं टाइम बहुत लग जाएगा, कैसे, क्या, क्यों, ये वो। और मुहासबा कीजिए कि एक दिन का वक्त ये था कि जिस दिन हमने पहला पारा शुरू किया था, और आज आप देख लीजिए कि आखिरी पारा शुरू होने लगा है। क्या मैं इस नेमत को डिज़र्व करती हूँ? क्या ये मैंने अपनी किसी काबिलियत की बुनियाद पे पारा सुना या सुनाया या दूसरों को सुनवाया? तीन ही चीज़ें हैं ना, या हम सुन रहे हैं या सुनवा रहे हैं या पढ़ रहे हैं। क्या मैंने इस चीज़ को देखा? और नेमतों का जब एहसास ना हो ना तो नेमतें छिन जाती हैं, बोझ तो नहीं हमारे लिए? और अल्लाह ताला आपसे मुझसे इस चीज़ का हिसाब लेगा। सुम्मा लतुस्सलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। फिर तुमसे उस दिन नेमतों का हिसाब होगा, सवाल होगा। तो आइए दिल के अंदर बड़ा खुशू और बड़ी ही नदामत और बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस करते हुए इस पारे को शुरू करते हैं। और अल्लाह ताला हमारे वक्त में भी बरकत दे, हमारे फहम में भी बरकत दे और हमें इसकी तौफीक दे कि हम इसका हक अदा कर सकें। नखमतुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बादु, फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुयस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाह तआला की तौफीक और उसकी रहमत से 30वें पारे का आगाज़ करते हैं। 30वां पारा 30वीं सीढ़ी है जिस पर खड़े होकर इंसान को बहुत ऊपर से चीज़ें दिखती हैं। हमारी कैफियत कुछ उस तालिब इल्म की तरह है जिसको एक इम्तिहान देना था और इम्तिहान देने के लिए वो अपने से पहलों के पर्चे ढूंढता है। आपने अपने कल्चर में देखा होगा कि अमूमन स्टूडेंट पिछले सालों के पर्चे रखता है सामने ताकि उससे आइडिया ले सके और फिर उसके मुताबिक तैयारी करे। जो 29 पारे पीछे मैंने आपने पढ़े ये असल में पिछले सालों के तजुर्बात थे, पिछली कौमों के हालात, पिछली कौमों के साथ जो मामलात अल्लाह ताला की तरफ से हुए उसका तذکرہ था। और वो इम्तिहान क्या है जो आप और मैं देने के लिए बैठे हुए हैं? वो है क़यामत का इम्तिहान। आज इस पारे में अब सिर्फ क़यामत है। आप कह लीजिए कि पिछले 29 पारे आखिरत की तैयारी के लिए पुराने क्वेश्चन पेपर्स थे जिसमें पिछली कौमों के हालात बताकर, पिछले लोगों की बातें बताकर अल्लाह ताला ने आपको मुझे तैयार किया। अब 30वें पारे में क़यामत का पेपर आउट हो रहा है। क्या वो देखो असल में क़यामत क्या है, असल में उस दिन तुम्हारे साथ होने के हवाले और क्या हालात और मामलात होने वाले हैं। तो फितनों के मौजू में इसमें हम जिन फितनों को देखेंगे, जिन मैंने इसलिए कहा कि आज हम सिर्फ एक फितना नहीं बहुत सारे फितने देखेंगे और उन सब को अगर एक खूबसूरत से वॉज में, एक बड़े खूबसूरत गुलदान में समेटें तो आज का फितना है खुशहाली का फितना, फितनतु सर्राई। कुरान पाक में कई जगह आपने लफ्ज़ पढ़ा फिस सर्राई व दर्राई। सर्रा वही लफ्ज़ है जिसको उर्दू में आप सुरूर के लफ्ज़ से जानते हैं, ऐसी खुशी जो छुपाने की कोशिश भी की जाए तो छुपे ना, खुशहाली, नेमतों की कसरत, माल दौलत की कसरत, ये सारा कुछ इस खुशहाली के लफ्ज़ में आता है। जितना ज़्यादा आप और मैं इसके ऊपर गौर व फिक्र करते हैं, हमें वो सब लफ्ज़ नज़र आ जाते हैं जो आज हमारे दिमागों और दिलों पे छाए हुए हैं। और वो क्या है कि जब दुनिया में अल्लाह दौलत दे, नेमते दे, तो जो इंसान की कैफियत होती है उसको देखने के लिए ये पारा आपके मेरे सामने है। इस एक खुशहाली से जो अपनी जगह बहुत प्यारी है, देखिए अगर मैं इस जुमले को यूं लिखवाती, खुशहाली का फितना, तो लगना क्या था कि खुशहाली खुद ही एक फितना है, दौलतमंद फितना, माल फितना, सब कुछ फितना, पैसा फितना, औलाद फितना, लग्जरियस लाइफ फितना, हालांकि ये गलत है। खुशहाली अपनी जगह बहुत बड़ी नेमत है, खुशहाली, उर्दू में देखे ना, खुश मैंने अच्छा, हाली मैंने हाल, अच्छा हाल, ये तो नेमत है। ये तो ऐसे जैसे आपको कोई बहुत प्यारी चीज़ मिल गई, लेकिन होता क्या है कि उसके बाद कुछ फितने शुरू होते हैं। वही मिसाल जो पीछे भी आपको दी थी कि चीज़ तो अच्छी होती है लेकिन आप उसका इस्तेमाल गलत करते हैं। तो जब दौलत मिलती है, जब खुशहालियाँ मिलती हैं, तो लोग कुछ फितनों का शिकार हो जाते हैं। आइए ज़रा गिनते जाएं और लिखते जाएं कि कौन से फितने हैं। अभी सिर्फ नाम बोलकर आगे चलूंगी, पूरे पारे में इंशाल्लाह हम इनमें से एक एक चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। आप देख लीजिए कि अगर एक पारा आपने मिस किया, और आज और कल यानी ये 2 दिन में पारा होगा, इसी वजह से कि इसमें इतना कुछ है, अगर उसका हक अदा ना कर सके तो बात नहीं बनेगी। तो सबसे पहला फितना जो खुशहाली के साथ उठ जाता है जहनों में, वो कह के कामयाबी के गलत मेयार राइज हो जाते हैं। लोग किस तरीके से इल्मे वही से बढ़कर इल्मे दुनिया के हरीस होने लगते हैं, फिर इबादात में कमी आने लगती है, हर शख्स वक्त की कमी की शिकायत करता दिखता है, फिर जहनी दबाव जिसको आप स्ट्रेस कहें और हुलू जिसको आप एंग्जाइटी कहें, इसका शिकार होने लगता है, फिर जितना माल बढ़ता है उतना ये एहसास होने लगता है कि अल्लाह ताला मुझसे खुश बहुत है तभी तो दे रहा है, फिर इसका एक फितना क्या आता है कि मुखलिस मोहब्बतों से इंसान महरूम हो जाता है और खुद गर्ज दोस्तों का साथ मिलने लगता है, और एक फितना खुशहाली के बाद जो आता है कि हराम कामों को भी नागुजीर समझने लगता है, यानी वो चीज़ें जो अल्लाह ने हराम कर दी, बंदा कहता है मेरा इसके बगैर गुजारा ही नहीं, मैं घर ही नहीं ले सकता जब तक कि मैं अल्लाह को नाराज़ ना करूं, और इसके बाद फिर बहुत सारे गुनाहों के फितनों में इंसान मुलव्वस होने लगता है, फिर एक और फितना आता है इसके बाद, और वो क्या कि रिश्तेदारों की गमी खुशी में भी शामिल नहीं होता, सगी बहन के बच्चे की शादी है और भाई आ नहीं पा रहा क्योंकि और पैसा कमाना है, 5,000 का चेक भेज देगा, खुद नहीं आ पाएगा। ये फितने देखे आपने, दिन ब दिन जब माल बढ़ता है तो हम अपनों से कितना दूर होने लगते हैं, गरीब रिश्तेदार तो फिर अपने लगते ही नहीं, फिर इसी तरह जितना माल बढ़ता है उतना बुखल आने लगता है, क्लॉगिंग होने लगती है दिल में, थोड़े माल वाला ज्यादा दे देता है, उसको लगता है कि मेरे लिए इतना ही काफ़ी है बाकी दे दूँ, माल बढ़ता है तो फिर वो तो जितना साइकिल बढ़ता गया उतना ही दिल में बढ़ा कि अब हमारी तो अपनी ज़रूरतें बहुत हैं, फिर इसी तरह खुशहाली के फितनों में से एक फितना हमारे ऊपर जो आ जाता है, आसाइश पसंद होने लगते हैं, खुद भी और बच्चों को भी, लग्जरियस लाइफ के आदी, जिनकी वजह से फिर सेहतें ख़राब हैं क्योंकि ज़रा नरम गद्दे हैं, ज़मीन पर तो सोना नहीं, खाने तो इतने भारी भरकम और बहुत हाई कोलेस्ट्रोल फूड खाएंगे, सेहत तो ख़राब होगी, और फिर एक और फितना जो खुशहाली में से निकलता है, आखिरत की जवाबदेही का एहसास ख़त्म हो जाता है, वो कहते हैं नहीं मुझसे नहीं अल्लाह ने पूछना, वला युरिदित तो इला रब्बी ला जिदन्ना खैरा मिनहा मुनक़लबा, अगर जुमे को सूरह कहफ गौर से पढ़ते हैं तो ये जुमला हर जुमे पढ़ते हैं कि जब दुनिया में अल्लाह ने उसको दो बाग दे दिए तो कहने लगा कि दुनिया में जो दे दिया तो भला आखिरत में नहीं देगा, और फिर एक और फितना है कि इंसान रैट रेस का शिकार हो जाता है, और सबसे बड़ा फितना जो इंशाल्लाह कल बहुत डिटेल से डिस्कस होगा अल्लाह ने चाहा तो, और वो है कि जदीद नस्ल, जवान नस्ल की बेचैनियाँ और जहनी कर्ब का आगाज़ होता है, यानी जहाँ सिर्फ दौलत, माल, कैरियर और ये सब कुछ चल पड़ता है ना, तो फिर वहाँ की यूथ परेशान है, और हकीकत है कि आज हमारी यूथ परेशान है। आपने इनके चेहरों पे कभी वो खुशी कमी देखी होगी जो आपको अपने बचपन की और अपनी जवानी की याद आती होंगी, क्या किलकारियां भरते हुए लोग होते थे, क्या वो हालात होते थे, आज तो मुस्कुरा भी लें बच्चियां तो बड़ी बात है। मैंने एक बच्ची से पूछा, बेटा आप इतनी दुखी क्यों लगती हैं, आप बड़ी सैड रहती हैं, क्लास में आती थी ऐसे गुमसुम, कहती यस क्या करूँ मुझे बहुत सारे फिक्र, स्ट्रेस है, यानी इस बारे में हम स्ट्रेस पे बहुत बात करने वाले हैं, अभी से बता दो। और स्पेशली यंग बच्चों में जो स्ट्रेस आ चुका है इस वक्त, खुदकुशियाँ और जो कुछ भी मामला आता है। तो मैंने कहा आपको क्या मसला है? कहने लगी मेरे ऊपर कर्ज बहुत है। पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, क्योंकि बाहर की दुनिया में किस पे कर्ज होगा, जब आप गरीब तो नहीं। कोई माली बाबे की बेटी से तो मैं बात नहीं कर रही थी, बड़ी अच्छी महजब माहौल की बच्ची थी। तो मेरे लिए उसका ये जुमला बड़ा ही अजीब था, हैरत हुई मुझे उसके जुमले पे। लेकिन बाद में जब फिर पूछा किस बात, कहती मेरे पर लोन है। मैंने कहा क्या लोन है आप पे, किस बात का लोन है आप? कहती मेरे पर स्टडी लोन है। और फिर जो दास्तानें हैं वो तो हम आगे जाके खोल लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आइए ज़रा पहली ही चीज़ पे बात करें जो इस हिस्से में हम पढ़ेंगे, और वो क्या है कि कामयाबी का मेयार बदल जाता है। खुशहाली के फितनों में एक नुकसान क्या है कि असल कामयाबी क्या ये भूल जाते हैं लोग, और बेकार की चीज़ों के पीछे भागने लगते हैं। बहुत सारे लोग आज भी यही करते हैं। बस आप देखिए कि आज हमारी जिंदगियों पे अगर एक नज़र डाली जाए तो जो चीज़ समझ आती है, और वो क्या है कि आज हमारे जहनों में से कामयाबी का मेयार बदल चुका है। किसी से भी पूछ लीजिए तो वो कहेंगे कामयाबी है बहुत पैसे होने का नाम, बहुत बड़ी जायदादों को लोग कामयाबी समझते हैं, बहुत बड़ा कारोबार है आपका तो आप कामयाब हैं, शोहरत वाले बहुत कामयाब है, यानी मशहूर लोग हैं तो वो सक्सेसफुल हैं, तभी तो लोग स्टार्स के पीछे भागते हैं और उनके फैंस बनना चाहते हैं। कई बच्चियां वो सिर्फ शोहरत की वजह से मॉडल बन जाती हैं। ये भी मैंने एक बच्ची से पूछा क्या आपको इस चीज़ में मिला क्या, कहने लगी मशहूर होने का शौक था। चलिए फिर इसी तरह से आप देखिए इकतदार को लोग कामयाबी समझते हैं। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, और वो क्या है कि जो जितना मशहूर होगा उतना कामयाब है, जो जितने पैसे वाला होगा, और इसी तरह हम इन चीज़ों को कामयाबी समझते हैं। और एक जुमला लिख लीजिए जेम होगा इस बारे का, जो तसव्वुरे कामयाबी होगा उसी के मुताबिक कोशिशें होंगी। इंसान फिर उसी के लिए भागता है दौड़ता है, उसी के लिए तवानाइयाँ लगती हैं, उसी के लिए सुबह उठ कर माएँ उठती हैं, बच्चों को भेजेंगी, शौहर जाएंगे, यानी आपकी ज़िंदगी का साइकिल उसी चीज़ के पीछे जाएगा जिसको आप कामयाबी समझेंगे। खुद से पूछिए हम कहाँ खड़े हैं। सुबह उठते ही घर का एक नक्शा जो बदल जाता है, किस चीज़ के पीछे जाते हैं, या पैसा कमाने या बच्चों के पढ़ने पढ़ाने और इन चीज़ों पर? आप कहते हैं क्या ये ना करें, यही करना है। लेकिन हमारी जिद्दोजहद, कोशिश, तवानाई और मशक्क़त का महवर क्या है? कामयाबी इन सब चीज़ों में नहीं, ये दुनिया की अधूरी कामयाबी है। मुकम्मल और पूरी कामयाबी क्या है? वलस्रिन्न लिंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाती वतवासु बिलहक की वतवासु बिस्सब्र। जब उस सूरत पे पहुँचेंगे तो देखेंगे कि अल्लाह ने कामयाबी का मेयार तो ईमान के बाद अमल सवाले, और अमल सवाले के बाद तवासी बिलहक और तवासी बिस्सब्र को रखा था। लेकिन आज हमारी कामयाबियों के मेयार बदल गए। अब जितनी बातें की हैं, अगर इसका रद्द देना चाहूँ तो एक सवाल लिखिए कि अगर दौलत कामयाबी का मेयार होती तो कारून तो दुनिया का सबसे कामयाब शख्स था, फिर आज वो क्यों ज़मीन में धंसाया जा रहा है? अगर हुकूमत कामयाबी की दलील होती तो फिरौन और नमरूद का बुरा अंजाम क्यों हुआ? याद रखिए माल कामयाबी नहीं, माल ज़रूरत है, मैल है हाथ का। अबू ज़र गफ्फारी जैसे शख्स को देखिए, झोंपड़ी भी नहीं थी उनकी लेकिन कामयाब थे। बिलाल हबशी पत्थरों पे लिटाए जाते थे लेकिन कामयाब थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही प्यारी बातें की हैं जो आगे हम पढ़ते जाएंगे, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महफिलों में जाना चाहें तो उनको इजाज़त ना मिले, रिश्ते ना मिले, लेकिन वो कामयाब है। अब आज ऐसी बातों को सुनकर कहते हैं वाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह, कसम खा लें तो अल्लाह पूरी करे। लेकिन याद रखिए सुभान अल्लाह कहना बहुत आसान है, मगर खुद अपने जहन से कामयाबियों के ये मेयार खुरच कर उसकी जगह अल्लाह का दिया हुआ मेयार तस्लीम करना, ये बड़ा मुश्किल है। खुद को बदलना मुश्किल है। हम पूरा कुरान पढ़ चुके हैं, अभी तक नहीं बदले, क्योंकि हम अपने माहौल से मुतासिर होते हैं। आज भी आप अपने ऊपर लेकर सोचिए, और ख़ास तौर पे फिर वही बात है कि जो माशाल्लाह पहले मरहलों से गुजर कर अब इकामत दीन के मराहल पे पहुंच चुके हैं, कई कई साल का कुरान हाथों में है, कई साल से पढ़ पढ़ा रहे हैं, क्या दिल से दुनिया की रौनक गई? क्या अभी भी झुरझुरी आती है किसी की कोठी और लंबी कार को देखकर, हाय सो लकी सो ब्लेस्ड, हाय इधर जा रही है बेटी इनकी, मेरी भी चली जाए। लेकिन याद रखिए लंबी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, कोठी, बंगला, ये आजमाइश है। अगर अभी भी आपके दिल में झुकाव, आप अपनी बेटियों के रिश्तों के वक्त इन्हीं चीज़ों को मेयार बनाते हैं, तो मान लीजिए कि आपका तस्वुर कामयाबी दुरुस्त नहीं है। बेटी का रिश्ता आ जाए और एक तरफ करोड़पति हो और दूसरी तरफ दीन का करोड़पति हो, किसको चूज करते हैं? ये माँ बाप के लिए सवाल है। तो आज एक बहुत बड़ी चीज़ यही है कि हमने उलाए कहुमुल मुफले हो उनको नहीं जहन में रखा। कि फलाह लफ्ज़ आते ही मुकम्मल कामयाबी के लिए। अगर आपके मेरे जहन में ये बैठ जाए ना कि दुनिया और आखरत का कामयाब कामयाब है, तो फिर बात बनेगी। कुरान तो बार बार आपको मुझे यही बताता रहा, 29 पारों में कितनी दफ़ा ये जुमले पढ़ लिए, लअल्लकुम तुफ्लिहून, लअल्लकुम युफ्लिहून, फलाह वफलुल खैरा लअल्लकुम तुफ्लिहून। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा माहौल अभी इसका साजगार नहीं है। बच्चों से लेकर बड़ों को देख लीजिए, हय अलस्सलाह और हय अलल फलाह की आवाज़ सुनने के बावजूद भी नमाज के लिए इस सोच से नहीं जाते कि यह हय अलल फलाह नमाज है कामयाबी का मेयार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखिए, सारी ज़िंदगी अल्लाह के दीन को देके चले गए। आज कितने लोग ऐसे लोगों को कामयाब कहते हैं, हम तो कहते हैं मौलवी, घर भी नहीं गाड़ी नहीं, दूर से देखें बड़ी तारीफें करेंगे, अगर हमारे घर मौलवी का रिश्ता आ जाए तो कितना करते हैं, और आज हमारे पास कोई दर्स देने वाली बच्ची का रिश्ता आ जाए तो हम अपने बेटे के लिए उसको लेते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझे इस दुनिया से क्या लगे, मैं तो एक मुसाफिर की तरह इस दुनिया से जाता हूँ, तो ज़रूरत है इस बात की कि हम अपनी फिक्र करें। तो आपने मैंने आज इंशाल्लाह इस बारे को इस सोच के साथ शुरू करना है कि हम हकूकुल्ला और हकूकुल इबाद से गफलत का शिकार हैं और फिर ख़ुद को कामयाब समझ रहे हैं, अगर तो नाकाम है। अगर हम इस रास्ते में सब्र से नहीं जमे और एक दूसरे को हक़ की नसीहत नहीं कर रहे और ईमान साले के बाद अमल नेक करके रुक नहीं गए, बल्कि हमने वतवासो बिल हक़ की वतवासो बिल सब्र का काम करना है, और आज तो हमारी डिक्शनरियों में नहीं है ये। हम ज़्यादा से ज़्यादा नमाज रोज़े हज की बात करते हैं, किसी से पूछिए फलाने ये कहे कौन नमाज पढ़ता है रोज़ा रखता है, सोमो सलात की पाबंद बची ठीक है, लेकिन ये एंड नहीं है। तवासी बिल हक व तवासी बिल सब्र, हम खुद को देखें तो हम कहाँ खड़े हैं। आज दुनिया इतनी दिमागों पर सवार है, मरने पर कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन ज़िंदगी में नहीं समझ आती। अल्लाह के नबी कह गए, कुन फिद दुनिया का अन्नक गरीब व आबिर सबील, लेकिन हम इसको भूले रहते हैं। ये दुनिया एक ट्रांजिट लॉन्ज है, ये एक एयरपोर्ट का एक छोटा सा वेटिंग रूम है, और इसी में खो के रह जाए। हमारे ईमानों पे गर्द पड़ी हुई है हुब्बे दुनिया की, इसको झटकी, क्योंकि किसी ने कहा कि काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम, मोमिन की ये पहचान के गुम इसमें आफाक है। आप देखिए कि लोग किस तरह कहते हैं, मैं एक स्कॉलर को सुन रही थी तो वो यही दर्द पेश कर रहे थे कि देखो तुम दुनिया में खो जाओगे तो तुम आगे के लिए कोशिश कैसे करोगे। तो इस दुनिया में गुम नहीं होना, मबहूत नहीं होना, मरूब नहीं होना, हर वक्त अपने आप को देखें। आज इस कुरान को, जिसको अल्लाह ने कामयाबी की एक कुंजी बना के हमारे हाथों में दिया, आज हमने इसके साथ क्या किया? आपका कोई बच्चा अगर ये सब पढ़ जाए तो क्या आप उसको कामयाब समझते हैं? सवाल करते हैं खुद से, मैंने अपने बच्चों को कैसी कामयाबी की तरबियत दी, सिर्फ दुनिया की या दीनी और दुनिया दोनों की? आप कहेंगे हाँ वो रखा हुआ है एक दिन दीन का, वो 1 घंटा कुरान भी पढ़ते हैं और ये भी पढ़ते हैं, तो याद रखिए पारे का मरकजी ख्याल है, वला सुरिन अल इंसान लफी खुसर इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती व तवासो बिल हक्की व तवासो बिस सब्र। जमाने की कसम, इंसान दर हकीकत बड़े खसारे में है, कुछ भी नहीं होता हमें सुन के। और वैसे कोई कह दे आपकी बैंकरप्सी आ गई, आपकी अब फैक्ट्री डूब गई, आपके आग लग गई, तो सारे अंदर के तबक रोशन हो जाते हैं। इसको सुन के कुछ नहीं होता, अल्लाह ने इतनी प्यारी खबर दे दी कि तुम नुकसान में हो, तुम्हारा हर दिन नुकसान, खुशी नुकसान, शादी नुकसान, मंगनी नुकसान, क्योंकि हर दिन हर चीज़ एंड की तरफ जा रही है। आज बहुत भी मिल गया तुम्हें, तो वहां ना जाके मिला तो क्या करोगे? तो अब सवाल है कि इस नुकसान को नफे में कैसे बदलें, क्या तरीके कार है नुकसान को नफे में बदलने का? तो उसका 4 नुकाती एजेंडा आपके मेरे सामने है। इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान लो, सब अकीदे के झोल खत्म करो, तुम्हारे अंदर से सब खोट खपट निकल जाए, अल्लाह का मुकाम भी पहचानो, रसूल का मुकाम भी पहचानो। किस तरह अल्लाह ताला अपने बंदों को ईमान की दावत देता है उसको पहचान लो। जब ये समझ आ जाएगी तो गोया के कामयाबी 25% हो गई, यानी आपका लॉस रिकवर हो गया। बड़ी कंपनीज अपने लॉस को कम करती हैं ना, तो जब ये काम हो जाते हैं तो आप देख लीजिए कि उसके बाद यही मामला होते हैं कि चले अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ सिक्योर कर लिया। उसके बाद क्या होगा? जब ये सारा मामला पूरा हो गया तो उसके बाद वामिलुस सालेहात, फिर अमल साले कीजिए। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का दावा कर कर आप और मैं नहीं बच सकते। फिर उसके बाद आप देखिए कि जब आप ये सारे काम कर कर लाते हैं, अमल साले, यहाँ तक आपकी ज़ाती ज़िंदगी है, नमाज रोज़ा हज ज़कात पूरा हो गया, सौमो सलात भी हो गई, और हमने माशाल्लाह कई चीज़ें अपनी ज़िंदगी में नेकियों के नाम पे करनी शुरू कर दी, बस यहाँ एक ब्रेक लगाइए। हम में से अक्सर मुसलमानों का आज ये मसला है खुशहालियों के फितनों में पड़ने की वजह से हम इसको मुकम्मल कामयाबी समझते हैं। हालांकि देखिए, ये इनफरादी नेकियां हैं। आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो जन्नत में नहीं जाएंगे, और इसी तरह की बातें। करना क्या है? वतवासो बिलहक। यहाँ से अब दूसरा सिलसिला शुरू होता है, यह है तवासी बिलहक, जिसको आपको 3 दिन से सिखाया जा रहा है। शहादत अलन्नास पहले था बंदगी, और अब आप रब के बंदे बन गए। अब के तवासी बिलहक उठिए, हक का झंडा उठाइए, और इस रास्ते में तकलीफें आएंगी, यह है इकामत दीन के गम। यह तवासी बिसब्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के खुतबे में क्या सवाल किया था? 1.25 लाख का मजमा था, जो उस दौर के हिसाब से बहुत बड़ी तादाद थी। थोड़े से लोगों में 1.25 लाख आ जाए, आज इतनों में अगर चंद लाख आते हैं तो हमें हाजी और बहुत ज़्यादा लगते हैं। अल्लाह के नबी सल्लम ने लोगों को जमा किया और एक एक जुमले को तीन तीन बार दोहराया, क्योंकि मजमा बहुत बड़ा था। इधर मुंह किया, सामने करके बोला, तो आपकी बात आगे से आगे दोहराते हुए कितनी देर में मजमे के एंड पे गई होगी। फिर आपने राइट पे दोहराया, फिर लेफ्ट पे। जब सबको ये जुमला मिल गया, ला हल बल्लगता, लोगो क्या मैंने पैगाम पहुंचा दिया। और एक एक लफ्ज़ तीन तीन बार दोहरा रहे थे, और साहब आपके सामने खड़े हैं, जो अव्वल तो बोलते ही नहीं थे। आप पढ़िए हदीसों को, साहबा की आदत थी अल्लाह के नबी के सवाल के जवाब में खामोश रहते अदब से, और कहते कि अल्लाह और उसका रसूल जानता है। और दूसरी बात, अगर ज़रूरत पड़ती तो बड़े अदब से नपा तुला जवाब देते थे। वो चुलबुले शागिर्द नहीं थे जो उस्तादों को भी पढ़ाना चाहते हैं, और जब अपनी लियाकत और अपनी जहानत का आरोप उस्तादों पर जमाते हैं। ऐसे नहीं थे साहबा। लेकिन इस एक सवाल के जवाब में साहबा ने 4 जवाब दिए, लिख लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। 4 जवाब थे, और वो भी दोहरा दोहरा के तीन तीन बार दे कर ये बातें कहते हैं। कहते हैं कि अल्लाह के नबी, इन्ना नशहदु अन्नका कद बल्लगता रिसालता वअदैतल अमानता वनसहतल उम्मता वकशफतल गुम्मता। बेशक हम गवाही देते हैं कि बेशक आपने पैगाम पहुंचा दिया, रिसालत का हक अदा कर दिया, अमानत को अदा कर दिया, उम्मत की खैर ख्वाही की, और आपने अंधेरों के पर्दे चाक कर दिए। इतनी लंबी बात क्यों की? क्योंकि साहबा को पता था कि अल्लाह के नबी ने उनको अबदी कामयाबी का रास्ता दे दिया। आज हमारा ये मेयार खो गया। आपने ये बात सुनी, अपनी उंगली मुबारक आसमान की तरफ की और फरमाया, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, 3 दफ़ा अल्लाह को गवाह बनाया। क्या अब क्यामत के दिन ये मेरा गिरेबान नहीं थाम सकेंगे कि मैंने हक नहीं दिया? आज भी कोई उस्ताद ये कह दे अगर कि लोगों मैंने हक दिया, तो आपने तो कितना सुना, उस्ताद ने तो क्या दिया? आपने तो आधा सुना आधा तोड़ा फोड़ा। आप कहते हैं दिया ही नहीं सही। नहीं, आपने लिया नहीं सही। देने वाला अपनी हैसियत से देता है, लेने वाले के अपने शौक और तलब और नसीब की भी बात है। आज वो उम्मत किधर खड़ी है जिनको अल्लाह के नबी ने दिया? ऐसे लगता है कि जुमला ये सुनकर सहाबा से अल्लाह के नबी को सुकून मिल गया होगा। 23 साल की मेहनत का सिला मिल रहा है कि जब लोग कह रहे हैं कि आपने हक अदा किया। कितनी मुश्किलात से ही मेरे प्यारे नबी ने तवासो बिल हक की व तवासो बिल सब्र के एक अमली नमूने बनते हुए, क्या योम ताइफ इसमें नहीं गुजरा? शबे अभी तालिब के 3 साल नहीं गुजरे? घाटियों मेरे दरख्तों के पत्ते खाए, जानवरों की मेंगनियों की तरह की हाजत होती थी साहबा को। पत्ते खाएंगे तो पत्ते ही निकलेंगे ना। क्या इस रास्ते में उहद और अहजाब जैसे मार्के नहीं हुए? कैसे प्यारे अपने 70 मुबल्लिगीन को शहीद करवा दिया? क्या क्या ना देखा मेरे आपके नबी ने, और आज हम कहाँ खड़े हैं? गैरों से गवाही लीजिए, बर्नार्ड शाह एक बहुत मारूफ शख्स है, उसका कॉल जाके आज गूगल पर डाल के चेक कर लीजिएगा। लफ्ज़ मेरे फ़र्क हो सकते हैं, लेकिन बात उसकी यही है, कुरान से बेहतरीन किताब मैंने नहीं कोई पाई, और मुसलमानों से बदतरीन कौम आज मुझे कोई नहीं दिखती। ये धब्बा है हमारे माथे पे। हम खुशहाल भी हो चुके हैं, आज दुनिया में सबसे अमीर मुल्क मुसलमानों का मुल्क, अमीर तरीन शख्स मुसलमानों के लोग, रिसोर्सेस हमारे मुल्कों में, लेकिन आज देखिए कि लोग क्या हमारी इज्जत करते हैं, हम कहाँ खड़े हैं। तो लिहाजा आपने, मैंने इंशाल्लाह इस बारे में से ख़ास तौर पे और यूथ को साथ लेके आज हमने इस पे गौर करना है कि हम कैसी नस्लें छोड़ रहे हैं। देखिए ना, किसी भी फैक्ट्री का प्रोडक्ट सही हो ना तो वो कामयाब है, और उसके बाद अगर चीज़ें टूटी हुई ख़राब चीज़ें निकले तो समझ लीजिए कि मशीनें ख़राब हैं। आज हमारा भी यही हाल है। और अल्लाह के नबी ने देखिए वहाँ फिर साहबा को जो पैगाम दिया था, फल युबल्लिग शाहिदुल गायब, अब मेरा ये पैगाम यहाँ से लेकर निकलो जो मौजूद हो और गायबीन तक पहुँचा दो। यानी एक तो वो जो हज के लिए साथ नहीं आए थे, अभी मक्का मदीना के इर्द गिर्द थे, और दूसरे क़यामत तक आने वाले मैं और आप। तो ये है फरीज़ा मनसबी, और ये है फरीज़ा रिसालत जो अल्लाह के नबी आपको मुझे देकर आ गए। तो हमारी तो डिक्शनरियों में तवासी बिल हक और तवासी बिल सब्र नहीं दिखता। इस पूरे पारे को पढ़ेंगे और इंशाल्लाह इसमें जितने फितने साथ साथ चलते जाएंगे, देखिएगा आज की दुआ जिसमें हमारे लिए वाकई एक मैसेज छुपा हुआ है कि अल्लाह जो नेमतें दी है ना, जो खुशहालियाँ दी हैं, उसके ऊपर आप हमें खैर और बरकत के साथ मुतमईन होने वाला बना। अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़म्बी व वस्सिली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे और मेरे घर में कुशादगी दे और मेरे रिस्क में बरकत दे। आमीन कहिए। तो जो नेमतें मिली हुई है ना, ये फितना ना बन जाए। आज की हदीस भी नोट कीजिएगा, सही बुखारी की रिवायत है 3158। आपने फरमाया तुम्हें खुशखबरी हो इस चीज़ के लिए तुम पुरुमीद हो जिससे तुम्हें खुशी होगी, लेकिन अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे बारे में मुख्ताजी और फ़कर से नहीं डरता। हाईलाइट करें, आज माँ बाप को गम क्या है? हाय बच्चे मोहताज ना रह जाए, हाय ये पढ़ा लिखा नहीं, पता नहीं इसको जॉब भी कभी मिलेगी नहीं, हाय ये वो। यानी आज हम अपने बच्चों को जो जुल्म के साथ पाल रहे हैं ना, वो जुल्म यह है कि हम उनकी तालीम के साथ उनके रिस्क को नथी कर देते हैं। वो इल्म के लिए थोड़ी पढ़ते हैं गरीब, क्या हमने उनके मुश्किलात डाल दी? 100 100 किताब पढ़ कर भी जाकर फिर भी जॉब ना मिले तो वो तो फिर स्ट्रेस में आएंगे, वो तो डिप्रेशन में होंगे। तो अल्लाह के नबी ने कहा मुझे ये फिक्र नहीं कि मेरी उम्मत गरीब हो जाएगी, मुझे अगर खौफ है तो इस बात का कि कुछ दुनिया के दरवाजे तुम पर इस तरह खोल दिए जाएंगे जैसे तुमसे पहले लोगों पर खोल दिए गए, तो ऐसा ना हो कि तुम भी इनकी तरह एक दूसरे से जलने लगो और ये जलना तुमको भी इसी तरह तबाह कर दे जैसा कि पहले लोगों को तबाह किया था। क्या आज रैट रेस नहीं लगी हुई? अगर ये फितना लिखा गया तो सच है कि झूठ है? पीछे सूरह हदीद में पढ़ के आए हैं कि तफाखुर और तकासुर का शिकार हो जाते हैं लोग। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन सारे फितनों में से निकाले। पारे की झलकियाँ देख लेते हैं, पूरा पारा कह लीजिए असल में तो क्यामत और आखिरत के दिन का यकीन दिलाता है, और बीच में हमें ये चीज़ें समझा दी जाती हैं कि देखो अपने आप को चेक करो कि तुमने इस दुनिया का हम तो नहीं रखा। तो हम इसमें फैसले के दिन के बारे में जानेंगे, यानी फैसले के दिन को आप यौमुल क़यामा कह लीजिए, आप इसको कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हकीकत है कि इस दुनिया में जो कुछ आपके मेरे साथ होने वाला है उसका तذकरा, फिर आपका रास्ता दिखाना। अल्लाह ताला बार बार कई सूरतों में ये कहेगा इन्ना हदईना हूँ, हमने रास्ते दिखा दिए, कुरान पढ़ा दिया, नबी भेज दिए, अब जाओ जो मर्जी करो, अब तुमने अपने आप को जिधर ले जाना है तुम्हारी मर्जी है। जैसे माँ बाप कहते हैं बच्चों को, अच्छा जी भाई हमने आपको पढ़ा लिखा दिया अब जो मर्जी करें, इसी तरह अल्लाह ताला के सामने खड़े होने से डरना सीखेंगे, पाकीज़गी इख्तियार करना सीखेंगे, कलाम अल्लाह से नसीहत हासिल करना और ख़ास तौर पर रब्बे करीम के बारे में धोखे में मुबतला होने से बचना सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे कि रब के सामने पेशी का यकीन कितना बड़ा यकीन होता है, आखरत की फ़िक्र में जीना सीखना है, नेक अमल करना और अपनी पैदाइश पे गौर व फिक्र करना, अल्लाह से डर कर रहना और गौर व फिक्र करना और अल्लाह से राज़ी रहना सीखेंगे। रिश्तेदारों और मोहताजों को खाना खिलाने की तरगीबात मिलेंगी इस बारे में, अपने नफ्स को पाक करना, रब की नेमत को बयान करना और रब की तरफ तवज्जो करना ये क्या होता है ये सीखेंगे, और नेक अमल करना भी सीखेंगे। फिर एक दूसरे को हक और सब्र की नसीहत करना सीखेंगे, अल्लाह ताला की आग से बचने की कोशिश करेंगे, पिछले लोगों के हालात से सबक लेना और रब की इबादत करना और जजा सजा पर यकीन रखना सीखेंगे, और फिर रब के लिए नमाज पढ़ना क्या होता है ये सीखेंगे। अल्लाह ताला आपके मेरे लिए इन सब चीज़ों को आसान करते और रब को एक मानना और रब की पनाह मांगना आखिर तक चलता जाएगा। शुरू करते हैं सूरत नबा से, कह लीजिए कि क़यामत के तذकरे से ही पिछली सूरत ख़त्म हुई थी, पिछला पारा सूरत मुरसलात पे था वो भी क़यामत, और यहाँ भी क़यामती मौजू है। 78 नंबर की सूरत है, 40 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन्नबैलज़ीम अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून। ये लोग किस चीज़ के बारे में पूछ-गिछ करते हैं इस बड़ी खबर के मुतल्लिक जिसके बारे में ये इख्तलाफ कर रहे हैं? यकीनन ये भी जान लेंगे, फिर बिल यकीन इन्हें जल्द मालूम हो जाएगा कि हमने ज़मीन को फर्श नहीं बनाया और पहाड़ों को मेखे नहीं बनाया। शऊर पर उभरते हुए सवाल, और हमने तुझे जोड़ा जोड़ा पैदा किया और हमने तुम्हारी नींद को आराम का सबब बनाया। वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलनल्लैला लिबासा, और रात को हमने पर्दा बनाया और दिन को हमने वक्त रोजगार बनाया। रात पर्दा, दिन रोशन। रात आराम के लिए, दिन मईशत के लिए, रात सुकून के लिए, दिन मेहनत और तरक्की के लिए, रात को सारे अमाल मुनक़ते कर दिए जाते हैं, सो जाओ अब। और सुबह के साथ नया दिन नए अमाल की पुकार देता हुआ निकलता है, और लिबास इंसान का जिस्म छुपाता है। इसी तरह इस्तग़फार, इस्लाह और नेकियां इंसान के गुनाहों को ढाँप देती हैं। आज इंसान दिन रात के निज़ाम में रद्दोबदल करके ज़हनी दबाव और तनाव का शिकार है, स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार है। जैसे आप देखिए कि कश्ती उल्टे बहाव पे चले ना, तो मौजों के थपेड़ों पर रहती है। आज हमने अल्लाह के इन फैसलों को भी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी, और कायनात में जो इतना हुसन बिखरा हुआ है, इसके वक्त पे तो हम सोए रहते हैं। ना हमने कभी सनराइज़ देखा गौर से, ना सनसेट। आज सुबह यकीन करें हर ही रोज़ होता है, लेकिन आज पता नहीं अल्लाह ने कैसे नज़रें जमा दी। यकीन नहीं आ रहा था कि ये आसमान कुछ घंटे पहले स्याह था, फिर मलगजा हुआ, फिर पिंक हुआ, फिर स्काई के साथ लाइनें मिलती गई, स्काई और पिंक कलर हुआ, और उसके बाद फिर ऑरेंज लाइट, ऑरेंज के शेड करते हुए आप देखिए चमकता सूरज। ये सारे मंजर सुबह मैंने बैठे हुए अपनी खिड़की में साथ साथ देखे, आपका ये पारा तैयार करते हुए। तो मैं सोच रही थी कितना महरूम है वो शख्स जो इस वक्त पर्दे तान के सो रहा है। अपने बच्चों को कायनात दोस्त कीजिए, नेचर को देखें, इसमें देखेंगे प्यार आएगा अल्लाह पे। रोते बच्चे को बाहर ले जाएं, हवा ऐसे मुंह पे लगती है, चुप कर जाता है। आज हमें शौक नहीं रहा, हम आर्टिफिशियल चीज़ों में रहते हुए खुद भी मसनू हुए। इसलिए अब अगली आयतों पर ज़रा गौर करिएगा, कायनात में क्या कुछ है। वबनई ना फौकुम सबन शिदादा, और तुम्हारे ऊपर हमने सात मजबूत आसमान बनाए, और एक चमकता हुआ रोशन सूरज चिराग पैदा किया। जो सो के 12 बजे के बाद उठेगा, उसने ये चमकता हुआ चिराग कहाँ देखा। और बदलियों से हमने बकसरत बहता हुआ पानी बरसाया, ताकि से अनाज और सब्जा उगाएं। 11 आयतें 11 नेमतें, पता भी नहीं चला आपको। और आपने ज़मीन पहाड़ जोड़े, नींद, इसी तरह से रात दिन, सात मजबूत आसमान, सूरज, बादल, अनाज और सब्ज़े और घने बागात के बारे में पढ़ लिया। कैसे दिन को अल्लाह ने खूबसूरत किया, सात आसमान बना दिए, और ये सब कुछ करते कराते अल्लाह ताला आपको इस पे गौर व फिक्र की दावत देते हैं। तो अल्लाह ताला आपको मुझे ज़हनी तौर पर इन चीज़ों पे गौर करने के लिए एक एक्टिविटी देते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ाहरी और बातनी नेमतों को भी गिनो। और नेमतों को गिन नहीं सकते तो नेमतों का एहसास तकवा कैसे पैदा होगा। आप देखिए जब आप कायनात में फैली हुई इन सारी चीज़ों को देखते हैं ना, तो शुक्र के जज्बात दिल में उभरते हैं। फिर मार्फत और कुर्ब इलाही और फिर हुब इलाही मिलेगी, तो फिर स्ट्रेस क्या करेगा आपके मेरे पास रहकर। वैसे भी ये लेने वाली नहीं देने वाली चीज़ है, कुछ लोग स्ट्रेस देने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं माशाल्लाह। और डिप्रेशन की तो उस बंदे के अंदर गुंजाइश ही नहीं है जिसने सुबह शाम ये एक्टिविटी कर ली। तो आज से नियत कीजिए सनसेट सनराइज़ ये दो वक्तों में ओपन एयर पे जाइए, जहाँ तक मुमकिन है एक्सपोज कीजिए बाहर से खुद को। स्ट्रेस भी जाएगा और सब एंगजाइटी भी ख़त्म हो जाएगी। फिर फरमाया और घने बाग भी उगाए, बेशक फैसले के दिन का वक्त मुकर्रर है, जिस दिन के सूर फूका जाएगा, फिर तुम फौज दर फौज चले आओगे, और आसमान खोल दिया जाएगा, तो इसमें दरवाजे दरवाजे हो जाएंगे, और पहाड़ चलाए जाएंगे, बस वो सराब हो जाएंगे। बेशक दोजख घात में है, सरकशों का ठिकाना वही है, इसमें वो मुद्दतों तक पड़े रहेंगे, न कभी इसमें खुनकी का मज़ा चखेंगे यानी ठंडक, न पानी का, सिवाय गर्म पानी और बहती हुई पीप के। इनको पूरा पूरा बदला मिलेगा, इन्हें तो हिसाब की तवक्को ही ना थी। अनएक्सपेक्टेड है ये सब कुछ इनके लिए। सही बुखारी की रिवायत है 6537, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस शख्स से भी क़यामत के दिन हिसाब लिया गया वो हलाक हुआ। रावी कहते हैं मैंने पूछा अल्लाह के नबी कि अल्लाह ताला ने खुद नहीं फरमाया कि फ़ाम मन ऊत या किताब बहू भी यमीन ही फसौफ युहासिबु हिसाब यसीरा, यानी जिसको उसका नामा अमाल दाएं हाथ में दिया गया तो अनकरीब उससे आसान हिसाब लिया जाएगा। तो इस पर अल्लाह के नबी ने फरमाया ये तो एक पेशी होगी, मतलब यह कि क़्यामत के दिन जिसके भी हिसाब में खोद कुरेद की गई इसको यकीनी अजाब होगा। अल्लाह ना करे हमारी पटारियाँ खुलें, अल्लाह ना करे हमारे अकाउंट्स खुलें क़्यामत के दिन, अल्लाह ना करे हमारा हैंड बैगेज चेक हो जाए, हमारा अंदर का लगेज चेक हो जाए। कभी भी आप एयरपोर्ट के मनाजिर को जहन में रखें तो आपको क़्यामत के दिन क्या कुछ होने वाला है उसकी फिक्र लग जाए। सवाल पैदा होता है कि ये सब ख़ास तौर पे किसके साथ होगा, किसका मामला है। तो फरमाया वकज़्ज़बू भी आयातिना किज़्ज़बा, और बेबाकी से हमारी आयतों को झुटलाते थे। हमने हर एक चीज़ को लिख कर शुमार कर रखा है, अब तुम अपने किए का मज़ा चखो, हम तुम्हारा अज़ाब ही बढ़ाते जाएंगे। देख लीजिए कितनी खूबसूरत बात सामने आ गई कि जब तक खुद अपना हिसाब नहीं करोगे, कल वहां जाके हिसाब में जो होगा उसकी तैयारी कभी ना होगी। इसके बरक्स इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा हदाइक व अनाबा, यकीनन परहेजगार लोगों के लिए कामयाबी है, बागात हैं, रंगूर हैं, और नौजवान कुंवारी हम उम्र औरतें हैं, और छलकते हुए जाम शराब के हैं, वरना तो वो बेहुदा बातें सुनेंगे और ना ही झूठी बातें सुनेंगे। इनको तेरे रब की तरफ से इनके नेक अमल का ये बदला मिलेगा जो काफी इनाम होगा। इस रब की तरफ से मिलेगा जो कि आसमान और जमीन का और जो कुछ इनके दरमियान है, इनका परवरदिगार है और बड़ी बख्शिश करने वाला है। किसी को इससे बातचीत का इख्तियार ना होगा। जिस दिन रूह और फरिश्ते सफ़े बांध कर खड़े होंगे तो कोई कलाम न कर सकेगा, मगर जिसे रहमान इजाज़त दे दे और वो ठीक बात जुबान से निकाले। अरबों खरबों लोगों का मजमा और पिन ड्रॉप साइलेंस, कितनी अजीब बात लगती है। आखरत के दिन जो कुछ होने वाला है उसी की बातें बताई जा रही हैं। जालिका यौमुल हक, ये दिन हक है, जो चाहे अपने रब के पास नेक अमल करके ठिकाना बना ले। और इन्ना अंज़रनाकुम, हमने तुम्हें अनकरीब आने वाले अजाब से डरा दिया और चुकन्ना कर दिया। जिस दिन इंसान अपने हाथों की कमाई को देख लेगा और वयकूलुल काफिरु या लैतनी कुंतु तुराबा, जिस दिन इंसान अपने हाथों की कमाई को देखेगा और काफिर कहेगा कि काश मैं मट्टी होता, जब जानवरों को हिसाब किताब से फारिग होने के बाद मट्टी होता देखेगा तो यही काम करेगा उस वक्त। तो आप देखिए कि इस सूरत ने आपको मुझे क्या सिखा दिया। आज हम सिर्फ दुनिया के इल्म को हासिल करके इस हकीकी इल्म को छोड़कर कहीं गुमराहियों के रास्तों पे तो नहीं आ गए। जिंदगी में खौफ और डिप्रेशन ऐसे तमाम लोगों पे जिनकी जिंदगियां इस्लाम के नूर से खाली हैं और इताअत के नूर से खाली हैं, मौत के वक्त परेशानियां हैं और जहन्नुम के वक्त हसरतें और पछतावे होंगे। क्या पछतावे होंगे, जरा आखिरी आयत पे गौर करें। अब देखिए कि मौत के वक्त हसरतें, गम और पछतावे क्या होंगे। काश मैं लौटाया जाता, मजीद मोहलत मिले, सदका और नेक अमाल करूँ। याद कर लीजिए 28 पारे में से आखिरी आयत जो आयत तदब्बर भी थी हमारी। कब्र में हसरत और गम पछतावे क्या होंगे कि वहां वहशत और तन्हाई होगी। जिंदगी जाया करने पर पछतावा होगा, नेक अमाल ना करके आने पर हसरत और अजाब होगा। फिर हशर के मैदान में हसरतें, गम और पछतावे होंगे। क्या घबराहट, वहशत, हशर की सख्तियाँ, लोग अपने पसीनों में डूबे हुए होंगे। फिर आखिर में जहन्नुम में हसरत और गम पछतावे क्या है कि आग में जलते वक्त गम होगा, स्ट्रेस होगा, रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, कभी खामोशी से आंसू बहाने लगेंगे, कभी मालिक जो जहन्नुम का दरोगा है उससे जाकर इल्तजाएं करने लगेंगे कि रब से कहो यहाँ से निकाल दे, कभी परेशानी में अजाब में एक दिन की कमी की दरख्वास्तें करेंगे। तो क्या सीखा इस सूरत से कि क़यामत का तस्करा है और मखलूक पर अल्लाह के एहसानात है। अल्लाह ताला ने इंसान को जोड़े जोड़े बना दिया, क़यामत के दिन की झलकियाँ और मुत्तकीन का जन्नत में इस्तकबाल और रोज़े क़यामत रब्बुल आलमीन की शान और इंसान की बेबसी। और हमने इसमें देखा कि जहन्नमी जहन्नम में अहकाबा रहेंगे, हेकबुन की जमा, 23 आयत में आपने देखा। और हेकबुन कितनी लंबी बात, कितनी मुद्दत है। किसी ने सवाल किया कि जहन्नमी कम से कम वक्त कितना रहेंगे जहन्नम में, तो एक शेख हैं तजवीरी, उनका नाम है, कहते हैं कि 1000 मिलियन साल, ज़मीन वाले साल नहीं वहाँ के साल, क्योंकि वहाँ हिकबुन की बात, और हिकब कहते ही एक ऐसी इकाई है जो दुनिया के तकरीबन 6400 ईयर्स के होते हैं। और यहाँ हिकब नहीं एहकाब आया, हमें इन जमा तफरीकों से क्या लेना और क्या देना। क़यामत का दिन कोई इतना आसान दिन नहीं है, और उसके बाद जहन्नम को इतनी हल्की चीज़ नहीं है, बड़ी बुरी जगह है। फिर हमने आयत 25 में देखा कि जहन्नमी के जिस्म से जो खून पसीना और पस निकलेगी वही वापस उनको पिलाया जाएगा, गस्साका, और वो पीना पड़े तो क्या हाल होगा। इतना गुस्सा क्यों आता है अल्लाह को लोगों पे, इसलिए कि दुनिया में पूरी चॉइस दी। अल्लाह ने मुस्लिम बनकर जीने की चॉइस दी, लोगों ने इस्लाम को कबूल ना किया। अल्लाह ताला ने शुक्रगुजार बनने का मौका दिया, लोग शुक्रगुजार ना बने। अल्लाह ताला ने इस दुनिया की अधूरी कामयाबियों से ऊपर उठ के आखिरत के लिए काम करने की पूरी चॉइस दी थी, लोग ना माने तो अल्लाह ताला ने फिर उनको यहाँ तो इस तरह पकड़ नहीं था। और याद रखिए कि जिसको ये वक्त याद रहेगा उसकी ज़िंदगी में ज़रूर चेंज आएगी। अगली सूरत देखिए नाजियात है, 79 नंबर की सूरत, 46 आयात हैं। जान कुनी का वक्त, मोमिन की और फाजिर की जान कैसे निकलती है, ये है इस सूरत का मेन थीम। वन नाजियाती गरका, वन नाशिताती नश्ता, वसाबिहाती सबखा, फसाबिकाती सबका, फल मदब्बिराती अमरा, यौम तरजुफुर्राजिफा। डूब कर सख्ती से खींचने वालों की कसम, काफिर की जान निकलने का वक्त है। बंद खोल कर छुड़ा देने वालों की कसम, मोमिन की रूह निकलने का वक्त है। और तैरने फिरने वालों की कसम, फिर दौड़ कर आगे बढ़ने वालों की कसम, फिर काम की तदबीर करने वालों की कसम, जिस दिन कांपने वाली कांपेगी, इसके बाद एक पीछे आने वाली पीछे पीछे आएगी। बहुत से दिल उस दिन धड़कते होंगे, जिनकी निगाहें नीची होंगी, कहते हैं क्या हम पहली किसी हालत की तरफ फिर लौटाए जाएंगे, क्या इस वक्त जब के हम बुसीदा हड्डियां हो जाएंगे। कहते हैं फिर तो ये लौटना नुकसानदेह है, मालूम होना चाहिए वो तो सिर्फ एक खौफनाक डांट है, कि जिसके जाहिर होते ही वो एक दिन एक दम मैदान में जमा हो जाएंगे। क्या मूसा की खबर तुमको पहुंची, कितनी बार पहुंच गई अल्हम्दुलिल्लाह, जबकि इनके रब ने पाक मैदान तुवा में पुकारा कि तुम फिरौन के पास जाओ, इसने सरकशी इख्तियार कर ली है। इससे कहो क्या तो अपनी दुरुस्तगी और इसलाह चाहता है, और ये कि मैं तुझे तेरे रब की राह बतलाऊं ताकि तू इससे डरने लगे। बस इसे बड़ी निशानी दिखाई तो इसने झुटलाया और नाफरमानी की, फिर पलटा दौड़ धूप करते हुए फिर सबको जमा करके पुकारा, अना रब्बुकुम अला, तुम सब का रब मैं ही हूं। तो सबसे बुलंदों वाला अल्लाह ने भी इसे आखरत के और दुनिया के अजाब में गिरफ्तार कर लिया। ये है खुशहाली का फितना कि इंसान खुद को रब ही बना ले, लोगों के नसीब के फैसले करने लग जाए। बेशक इसमें इस शख्स के लिए इबरत है जो डरे। तो देखिएगा फिरौन का दावा, अना रब्बुकुमुल आला, आज के मुसलमान का दावा, अधूरी इतात, मुकम्मल नाकामी। वक्त का हुक्मरान, जान कैसे निकलती है, वक्ते नजा देखिए, दरिया ने भी कबूल ना किया, पानी में डूब के मरा, और आखरत में नाकामी। इसके बरक्स जब मुसलमान भी अपने नफ्स की इस पुकार अना रब्बुकुमुल आला की बात करता है, तो उसकी दुनिया की जिंदगी तंगियों का शिकार है, परेशानियां हैं। वह मनारा दन जिक्री फाइन लहु मईशतन धन का सूरत तौहा में तो पढ़ के आ चुके। तो याद रखिए कि मोमिन जितना अल्लाह से दूर होगा, अपने नफ्स को खुदा बनाएगा, उसकी ज़िंदगी स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार होगी, निज़ा की सख्तियाँ बहुत होंगी, और आखिरत में नाकामी होगी। आज दुनिया में जिल्लत और ख्वारी है, कल आखिरत में रसवाई होगी। कभी बैठ कर सोचिए स्ट्रेस किस बात का, हुब्बे दुनिया। कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं आप, अपने कद लंबे करना चाहते हैं आप, दूसरों के जूतों में पाँव डालना चाहते हैं, इसलिए आपको स्ट्रेस है। एक दफ़ा बैठिए कंटेंट होके, नहीं तो ना सही, देखिए कितने रिलैक्स हैं। पूरी कोशिश कर लीजिए और उसके बाद जो हो गया सो हो गया। तो आज इंसानियत इस स्ट्रेस के फितने का शिकार इसीलिए हुई कि उसने दुनिया की हकीकत ना समझी, उसको मिस अंडरस्टूड किया। अल्लाह ताला अब आगे फरमाते हैं चंद सवालात की सूरत में, अंतुम अशद्दु खल्कन अम अस्समाउ बनाहा, क्या तुम्हारा पैदा करना ज्यादा दुश्वार है या आसमान का, अल्लाह ने इसे बनाया, इसकी बुलंदी ऊंची की, फिर इसे ठीक ठाक कर दिया, इसकी रात को तारीक कर दिया और इसके दिन को निकाला, इसके बाद जमीन को हमवार कर दिया यानी बिछा दिया, इसमें से पानी और चारा निकाला और पहाड़ों को मजबूत गाड़ दिया, ये सब तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों के फायदे के लिए हैं। अब आगे देखो क्या होने वाला है, असल बात तो आगे है, पीछे की चीज़ों को तो छोड़ दीजिए। जो कुछ अगली दुनिया में आपके मेरे सामने आने वाला है, उसका एक हल्का सा पेल रिफ्लेक्शन है। फैजा जात तामतुल कुबरा, यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, बस जब वो बड़ी आफत यानी क़यामत आ पड़ेगी, क़यामत का नाम अत्तामा, जिस दिन कि इंसान अपने किए हुए कामों को याद करेगा और हर देखने वाले के सामने जहन्नम जाहिर की जाएगी। तो जिस शख्स ने सरकशी की होगी और वासरल हयात दुनिया और दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी होगी, फाइनल जहीम हियल मावा, तो इसका ठिकाना जहन्नम है। सारा क्रेज खत्म, सारी एंजाइटी खत्म, इसके लिए पढ़ा, इसके लिए कैरियर बनाया, इसके लिए खपे रुले थपे, अल्लाह को नाराज किया, सब खत्म। आप डर गए तो खुशखबरी है आगे आपके लिए, वम मन खाफ मकाम रब्बिही वनहन नफ्स अनिल हवा, हाँ, जो शख्स अपने रब के सामने खड़े होने से डरता रहा होगा और अपने नफ्स को ख्वाहिश से रोका होगा, तो इसका ठिकाना जन्नत है। लोग आपसे क़यामत के बाकी होने का वक्त दरियाफ्त करते हैं, आपको इसके बयान करने से क्या ताल्लुक? यानी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें, ऐसे सवालों से क्या मिलेगा? इसके इल्म की इंतहा तो अल्लाह की जानिब है। आप तो सिर्फ इससे डरते रहने वालों को आगाह करने वाले हैं। जिस रोज इसे देख लेंगे तो ऐसा मालूम होगा क्या कन्नहुम यौम यरौनहा लम यलबसू इल्ला अशिय्यतन औ दुहाखा। ऐसा मालूम होगा सिर्फ दिन का आखिरी हिस्सा या अव्वल हिस्सा ही दुनिया में रहे, पूरा दिन भी नहीं है, दिन का भी कुछ हिस्सा। ये है वो दुनिया जिसके पीछे हलू एंग्जाइटी का शिकार है। हाय ये हाय हाय, आज आप यंग बच्चों को देखिए, छोटे बच्चों को देखिए, क्या किताबों के बोझ में नहीं लाद दिया हमने उनको? ऐसे लगता है कि नमाजें जाएं तो जाएं, रोजे छुटें तो छुटें, दौरे कुरान छुटे तो छुटे। कितना इजी लेती है माँ इस बात को कि बच्चे अब क्या करें, ना बोझ बड़ा। ये हलू किस चीज का है? क्या मिलना है इसके बाद? स्ट्रेस मिलना है, कर्जे मिलने हैं, एक ऐसी रैट रेस का आप शिकार हो जाएंगे कि उसके बाद एक चरखे की तरह घूमेंगे और कोल्लू के बैल की तरह आप उसी तरीके से जिंदगी बसर कर देंगे। जो होगा बड़ा दर्द है दिल में अपनी यंग बच्चियों और बच्चों का, इसलिए ये जुमले बोल रही हूँ। खुशहालियों के शौक ने और दौलत कमाने के शौक ने हमें बच्चे को पढ़ने पे लेकर उसके बचपन से जवानी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वितरेगोन से यूनी तक का सफर, खुशहाल बन जाए, माल कमा लें, क्रोन कमाएं। लोग नेकियों को छोड़कर क्रोन कमाते हैं। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। फिर फरमा बरदारियां हो तो हो, क्या छुटता है क्या नहीं छुटता कभी आपने सोचा? बेटों की तो बात नहीं छेड़ती मैं, क्योंकि उन्होंने तो कुछ तो करना ही था, वो तो कमाम है। आज हमारी बेटियां किस हाल पे चल पड़ी? आज हमारे इल्म में दो इलूम में चॉइस है। आपको अल्लाह ने दीन का भी इल्म दे दिया, फिर आप किस जगह धक्का खा रहे हैं? आज कुरान पढ़कर भी अगर हमने जाकर दूसरों की चीज़ें सीधी करनी है और हमने जाके काउंटर्स भी खड़े होना है और ऑफिसेज में बैठना है और फिर हर वो मजबूरी जो बीच में आती है उसको ही डिस्कस करना है, तो हमने क्या धोखे का सामान लिया? क्या ज़रूरत थी? इसीलिए तो लोग लेते नहीं, लेना चाहें तो ले नहीं पाते, और हफ्ते में एक दिन का कहकर देखिए 2 दिन कर लें तो जान पे ना बन जाए। तो याद रखिए, ये एक रैट रेस लगी हुई है जो गैरों को तो सजती है, उन बेचारों ने तो यही करना है क्योंकि उनके पास तो कोई सेटअप नहीं था। ना कवामियत का एहसास है मर्द को उधर, और ना बाप और शोहर होने के नाते और बेटा होने के नाते कोई बॉन्ड है। हमारी मुसलमान बच्चियों को क्या बन गया? क्योंकि हम एक माशरे का हिस्सा बन गए, हम उस पहिए में घूम रहे हैं जिसमें दूसरी दुनिया घूमती है। तो आइए एक दुआ सीखते हैं। निसाई की रिवायत है 5469। अल्लाह के नबी अक्सर एक दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल अरबई मिन इल्मिन ला यनफऊ मिन क़ल्बिन ला यख़शऊ व मिन नफ्सिन ला तशबऊ व मिन दुआइ ला युस्मऊ। अल्लाह, मैं 4 चीज़ों से तेरी पनाह मांगता हूँ। आज आप इस नीयत से मांगे, और जो बच्चियाँ सुन रही हैं और माशाल्लाह हमारी जोहराबाद की क्लास की वो बच्चियाँ जिन्होंने एक एक साल का स्टॉप लेकर सबीलुल जन्ना कोर्स किया है और अब बिल्कुल आखिरी किनारे पे खड़े हैं दौरे कुरान रमज़ान के बाद, इंशाल्लाह जल्द ही उनकी तकमील होगी। ख़ास तौर पे वो बच्चियाँ ये दुआएँ मांगें और यंग बच्चियों को बिठा कर ये दुआएँ सुनाइए कि अल्लाह, मैं 4 चीज़ों से तेरी पनाह मांगता हूँ, ऐसे इल्म से जो नफ़ा बख्श और मुफीद ना हो। आज आप कितने लोगों को नहीं जानते, डिग्री डॉक्टरेट की है, फ़ायदा नहीं उठाया, शादी हो गई, शादी के बाद बच्चा हुआ, बच्चों के बाद फिर बच्चे बच्चे और ससुराल, सारी डिग्रियां हाथ में पड़ी हैं। आपने एक सीट ज़ाया कर दी। मैं ये तो नहीं कह रही कि आप डॉक्टर बने ना, और ये भी नहीं कहती कि डॉक्टर बन के प्रैक्टिस ज़रूर करें और ना करें, मैं सिर्फ एक जनरल बात कर रही। इस वक्त मेरा मौजू दुनिया की तालीम नहीं है, असल कामयाबियों का मेयार समझिए। आप कहते हैं डॉक्टर बन जाएंगे तो कामयाब है, डॉक्टर बन के शादी ना हुई, रिश्ता ही अच्छा ना आया तो क्या वो दौलत के अंबार आपको खुशी देते? आप देखिए कि आज हमने अपने बच्चों को इतना एहसास कमतरी का शिकार कर दिया कि तुम जॉब नहीं करोगे तो रिश्ता नहीं होगा, तुम खूबसूरत नहीं होगे तो ये नहीं, तो उसकी जगह उनको वो इल्म सिखाइए जो इल्म नाफिया तक ले जाए। ऐसे दिल से जिसमें अल्लाह का डर ना हो, ऐसे नफ्स से जो सेरा भी ना हो, वीकडे से वीकेंड, फिर सुबह से शाम, फिर नाइट शिफ्ट, फिर पैसे की कभी हवस खत्म हुई? पहले एक वक्त था माँ बाप से सिर्फ 500 करोन पॉकेट मनी मिलती थी, 1,000 हो जाएगी जब कॉलेज से गए, बड़ी हद 2,000 गुजारा होता था कि नहीं? अब आपका 20 में भी पेट नहीं भर रहा, आपको तो 200 से भी ऊपर चाहिए, और आपको तो ये चाहिए, और आप तो गाड़ी बंगला कोठी घर और अपने फोन की बिल और आइनिंग है, ये किसने देने हैं? तो नफ्स तो सिराब नहीं होगा, ये तो पानी पीता ही जाएगा, दुनिया का फट जाएगा पेट, दुनिया कभी कम नहीं होगी। लिख लें पैसा जितना ज्यादा होगा उतना थोड़ा लगता है, और फिर ऐसी दुआ से जो अल्लाह के यहाँ कबूल ना हो, कहीं जिंदगी में हराम ना आ जाए कि जिसके बाद अल्लाह इतना नाराज हो कि दुआएं भी कबूल ना करे। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा दे। क्या सीखा सूरत नाजियात से कि अल्लाह की कसमें और क्यामत के तस्करे, किससे फिरौन में इबरत है इसलिए इसके लिए जो डरेगा। अल्लाह के लिए किसी भी चीज़ की तख्लीक मुश्किल नहीं, और इस रोज़ दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह देने वाले पछता रहे होंगे। रोइए खुशहाली के इस फितने को सुनते हुए। आपके घर में सोने चांदी के चमचे भी आ गए और छप्पर खट भी आ गए ना, और आप बड़ी से बड़ी ब्रांडेड बेडशीट्स भी बिछा लेंगे ना, तनहा होंगे तो रो के सोएंगे, दिल में स्ट्रेस होगा, बोझ होगा। आज देखिए दुनिया में खुशहाल मुल्कों में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन है। हसन बसरी कहते हैं कि इंसान को अल्लाह ने ख्वाहिशात भी दी और मकसद हयात भी दिया, जबकि फरिश्तों को ख्वाहिशात नहीं दी, सिर्फ मकसद दिया। इसीलिए जो इंसान फरमा बरदारी करता है अपने नफ्स पे पांव रख के, इसका दर्जा बहुत ज़्यादा है। तो आप मैं अपनी तरजीहात को देखें कहाँ खड़े हैं, और फिर हमने इसमें मौत का मंजर देखा, मोमिन की रूह कितने प्यार से निकलती है और काफिर की छुपती फिरती है, क्यों ना छुपे। अब देखिए आपको कहीं जाना और आप पहले किसी को कि अच्छा मुझे साथ ले लेना, नियत भी है, जो पहले से तैयार होता है ना वो पहली बेल पे बाहर आ जाता है, और जो तैयार ही नहीं, अच्छा देखती हूँ, सोचती हूँ, अच्छा कपड़े निकालती हूँ, अच्छा वो ढीलम ढीली करेगा, तो मोमिन पहले से तैयार होता है, पहली कॉल बेल पे मलकुल मौत की दरवाज़ा खोलता है और खुशी खुशी जाता है, जिसम से रूह निकल जाती है, काफिर की रूह छुपती है, तैयारियां नहीं थी, मोमिन ने सारी जिंदगी मरने की तैयारी की थी, तो उसकी तो फिर मौत बड़ी खूबसूरत होगी। और इसके बरक्स आप देखिए जब हम दुनिया दुनिया और दुनिया में खो जाते हैं तो हमारे क्या हालात होते हैं। इसलिए ज़रूरत है इस बात की कि अपनी तरजीहात को पहचाना जाए। फिर आप देखिए कि इसमें अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि इस रोज़ दुनिया में अपने नफ्स को मारने वाले ही कामयाब होंगे। आज थोड़ा सा कंट्रोल करें, दुनिया की तालीम के लिए कितना नफ्स मारते हैं, कितनी बेचारी बच्चियां बच्चे देखिए मेहनत करते हैं, कई पार्टीज नहीं होती, शादियों में नहीं जाते, पढ़ना है, इम्तिहान है, तो ये भी तो कमरा इम्तिहान है, इसके लिए भी तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर आप देखिए आयत 14 में हमने फैजा हम बिस साहिरा, साहिरा का नाम सुना है, ये क्या है, ये ज़मीन का नाम है, दुनिया, ये दुनिया साहिरा है, हर वक्त जागने वाली, अल्लाह ताला ने जो जिसके हिस्से में काम लगाया वो करते रहे। फिर आप देखिए कि फिरौन का आईक्यू लेवल बड़ा हाई था, फिर भी नहीं डरा, तो बहुत आईक्यू वाले लोग भी नहीं डरते। दुआ मांगिए कि अल्लाह वो दिल दे जो तुझसे डरने लगे। जिसने फिरौन की तरह पैगाम सुनकर ठुकरा दिया उसका अंजाम भी उसी तरह होगा। जिसने अना रब्बुकुम अला का दावा किया उसको फिर अपनी तस्वीर आईने में देखनी है। आज हम भी वही दावे करते फिरते हैं जो फिरौन ने कभी किए थे। चले उसके पास तो कुछ था बेचारे के, उसने तो कुछ किया तो किया, आपके मेरे लिए तो इस जुमले को बोलने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए पगली सूरत अबस है, जिसमें इल्म की सच्ची तलब रखने वाले को देखे जो इल्म नाफे चाहता था। 80 नंबर की सूरत है, 42 आयते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबस वतवल्लाजाहुलामा, वो तुर्श रूह हुआ और मुंह मोड़ लिया सिर्फ इसलिए कि उसके पास एक नाबीना आ गया। तुझे क्या खबर शायद वो समझ जाता, सच्ची तलब लेकर आने वाले ही सीखते हैं, या नसीहत सुनता और इसे नसीहत फायदा पहुंचाती। जो बेपरवाही करता है इसकी तरफ तो तू पूरी तवज्जो करता है, यानी आपका दिल उन लोगों के लिए कुड़ता है जो नहीं आते। अल्लाह दावत देता है उनको देखो जो इतने शौक और मोहब्बत से आकर बैठते हैं आपके पास। असल में इब्ने मखदूम का वाकया है कि नबीना थे, अल्लाह के नबी के पास ही रहते थे, और बड़ी चाहत थी, कोई एक मसला पूछना था कि अल्लाह के नबी से पूछने लगे। उस वक्त आपके बड़े बड़े सरदार बैठे थे और आप इस शौक में उनको तबलीग कर रहे थे कि शायद ये एक बदल गया तो बहुत सारे बदल जाएं, लेकिन चूंकि नबीना होने की वजह से वो देख ना सके तो वो जल्दी जल्दी अपनी बात कर रहे थे, तो उस पर अल्लाह ताला ने नबी की सिर्फ एक तेवरी जो उस नबीना ने नहीं देखी, लेकिन अल्लाह तो देखता है, उसको बुनियाद बना के इस सूरत का नाम ही अबस रख दिया। तो क्या पता चला कि जो लोग सुनने की नीयत से सोचेंगे सुनेंगे, नसीहत लेने के लिए वही फ़ायदा उठाएंगे, या नसीहत सुनता और इसे नसीहत फ़ायदा पहुंचाती। जो बेपरवाही करता है इसकी तरफ तो पूरी तवज्जो करते हैं, हालांकि इसके ना संवरने से तुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं। जो शख्स तेरे पास दौड़ता हुआ आता है और वो दौड़ भी रहा होता है, इससे तो बेरुखी बरतते हैं। ये ठीक नहीं, कुरान तो नसीहत है, जो चाहे इससे नसीहत ले। मुराद ये कि जो बहुत ही बड़े बनते हैं, एटीट्यूड का शिकार होते हैं, फिर वो कुरान से फ़ायदा नहीं लेंगे। ये तो पूरा असमत आसमानी कुतुब में से है, यानी अल्लाह हर एक को ये देता भी नहीं है। जो बुलंद वाला और पाक साफ है, ऐसे लिखने वालों के हाथों में जो बुजुर्ग और पाक बाज हैं, अल्लाह की मार इंसान पर कैसा ना शुक्रा है। इसे अल्लाह ने किस चीज़ से पैदा किया, इसे एक नुतफे से, फिर अंदाजे पर रखा इसको, फिर इसके लिए रास्ता आसान किया, फिर इसे मौत दी और फिर कब्र में दफन किया। ये खबर भी एक बड़ी नेमत है। अगर हमारे मुर्दे बाहर रहते तो उनकी बिगड़ती हुई शक्लों को देखकर हम उनसे नफरत करने लगते। फिर जब चाहेगा इसे जिंदा करेगा। हरगिज़ नहीं, इसने अब तक अल्लाह के हुक्म की वजावरी नहीं की। इंसान को चाहिए कि अपने खाने को देखे कि हमने खूब पानी बरसाया। अब ज़रा देखिएगा आज इफ्तारी के वक्त में अपने खाने पानी को, फिर फाड़ा ज़मीन को अच्छी तरह, फिर इसमें से अनाज उगाए और अंगूर और तरकारी और जैतून और खजूर और गुंजान बागात और मेवा और घास चारा भी उगा दिया तुम्हारे इस्तेमाल और फ़ायदे के लिए और तुम्हारे चौपायों के लिए। ये तो थी दुनिया की नेमतें। अब ज़रा क़्यामत का एक मंज़र। पिछली सूरत में तौमा का लफ्ज़ आया था, क़यामत के नामों में यहाँ नोट कीजिएगा, फ़ैज़ा जाते सौखा यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मीही व अबी व साहिबतिही व बनी। बस जब कान बहरे कर देने वाली क़यामत आ जाएगी। कान बहरे कैसे होंगे? सूर की आवाज़ से इतनी तेज़ आवाज़ होगी कानों के पर्दे फट जाएंगे। कैसे? देखिए सूरत अबस में पिछली सूरत की तरह साथ साथ दुनिया और साथ साथ आखिरत। कुछ चीज़ें इस दुनिया की, कुछ आखिरत की। बस दुनिया अल्लाह ने सजा दी। आखिरत कमाने के लिए जो कमाई करनी पड़ती है वो दुनिया से ही करनी है। ये दुनिया आपकी कमोडिटी है, ये रास है, ये कैपिटल है। इसको इन्वेस्ट करेंगे तो आखिरत बनेगी। अगर कमा लिया तो क़यामत के दिन अंजाम आपके दो में से एक तो होगा, या तो रोशन चेहरे होंगे जिन्होंने दुनिया में आखिरत कमाई, या स्याह चेहरे होंगे जो दुनिया में खो कर रह गए, और आखिरत इनके लिए स्ट्रेस डे होगी। हमारे गम क्या हैं आज? मर्दों की तवज्जो बेहतरीन मेयारे ज़िंदगी देने पे है, औरतों की तवज्जो घर ज़ाहरी हुसन की तरफ है। निगहदाश्त बच्चों की पढ़ाई कमाई और तरबियत के नाम पर इनका बचपन छीन लिया। इतना तो बच्चे नहीं पढ़ते थे जितना आज की माँ उनको पढ़ाना चाहती है। किताबों का बोझ। अब ज़रा सुनिए क़यामत का मंजर है, बिल्कुल अपने इन प्यारे प्यारे बच्चों और अपने भाई बहनों और अपने माँ बाप शौहर बीवी को याद करिए और फिर सुनिएगा। यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अखी, उस दिन आदमी भागेगा अपने भाई से और अपनी माँ से और अपने बाप से और अपनी बीवी और अपनी औलाद से। इनमें से हर एक को उस दिन ऐसी फिक्र दामनगीर होगी जो इसके लिए काफ़ी होगी। यानी उस दिन हर बंदे को अपनी लगी होगी, अपनी फिक्र होगी। क़यामत की कैंची मोहब्बतों और रिश्तों की डोरियों को काट डालेगी। जिस औलाद को दुनिया में दीन से ना जोड़ा, या फिर जोड़ा भी तो बस एक हल्का सा कोना पकड़ कर दीन का जोड़ दिया, अच्छा कम अज़ कम ये तो कर लो बेटा, कल अपने हाथों से उनको आग में डालना चाहेगा। और वल्लाह ही ये कोई झूठी बात नहीं है, अल्लाह कह रहा है तो इसमें कोई मुबालगा भी नहीं है। एक नहीं पीछे बीमार सूरत मारिज में भी पढ़ के आए, यहाँ भी आ गई ये बात। आज फिक्र कीजिए इन औलादों की, आपके बच्चे हैं ये, कोई मट्टी के मादू नहीं है, खिलौने नहीं है। कल इनको मरना है, कल इनकी जन्नत जहन्नम का फैसला। क्या आप चाहते हैं कि सूत लेकर आपका बच्चा जवानी में कंधों पे बोझ लेकर अल्लाह की नाफरमानियों में जाए, स्ट्रेस में ज़िंदगी गुजारे और चार पैसे कमा कर गाड़ी बंगला कोठी सेलफोन ले और मरते ही फिर वो जहन्नम का ईंधन बने? नमाजें किधर जाती हैं? एक डिग्री लेने में कितनी नमाजें फौत होती हैं कभी सोचा? आप तो गिनते हैं ना पैसे कितने लगते हैं, कितना बस टिकट लगा और बच्चे को कितना पॉकेट मनी दिया और कितनी एफर्ट हुई, जरा गिनिए तो सही। आज एक बच्चा दुनिया की तालीम लेते लेते 20 साल में हाँफ जाता है बेचारा। स्ट्रेस का वो शिकार है, परेशानियाँ उस पर, कर्जे उस पर, बोझ उस पर, और नमाजें भी फौत। क्या करें, घर आके पढ़ेंगे, वहाँ कैसे पढ़ें? आपको नहीं एहसास कि एक फजर एक असर आपकी बच्चे की कजा हो गई, सारी दुनिया लुट जाए तो भी ना उसका नुकसान पूरा हो? कितना मुतमईन है आज के माँ और बाप के क्या करें, फिर स्कूलों में तो नहीं पढ़ सकते, किस सेटअप में पढ़े हैं सोचिए, कल तक इस पे सोचिए तो बहुत सारी बातें हम निकलेंगी दिल में से। क्या आज हमें अपने बच्चों के लिए कुछ करना है? हमें एहसास क्यों नहीं है इस बात का? हमने जो सोचा वो कर लिया, घर बनाए ने थे बना लिए, सोचे तो बन गए, गाड़ियाँ ली तो एक थी, अब चार बच्चों की चार गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं, पहले एक सेल फोन था, अब 6 सेल फोन है, ये तो है। तो ये क्यों नहीं सोचते कि अपने बच्चों के लिए कोई दीन का भी तो काम कीजिए? क्यों हमारे बच्चे रोलर कोस्टर की तरह उसी स्कूल और बारनेहागे और उसी डे केयर से गुजरते हुए यूनिस में पहुंचते हैं, जहाँ देखिए फितने कितने हमारे बच्चों को। आप खुशहाल देखना चाहते हैं ना अपने बच्चे को, आपने उसको को एजुकेशन में डालना है, आपने उस बच्चे को कर्जे दिलवाने हैं, उसको वहाँ अपने ड्रेस कोड से भी अपने दोस्तों के बराबर दिखना है। अगर वो ज़रा से इस्लामी कपड़े पहन गई तो बेचारी मुस्लिम लगेगी, हाय बेचारी। उसको फिर फन फ्लेक्सिस में भी जाना है अपनी स्कूल वालों के साथ, उनको ट्रिप्स में भी जाना है, उनको पार्टीज में जाना है, उनको यूल पार्टी में जाना है, क्रिसमस में जाना है। किधर नहीं गमों में पड़े हुए अपने बच्चों को याद कीजिए। एक सेकंड के लिए अपने घर पे नज़र डालिएगा इस बारे के बाद। मेरा ले सारे कमरे ना गिन सके, इतना बड़ा घर आपका, और एक छोटा भी घर है ना, 2 कमरे का घर है। कितनी मेहनत से आपने इसको लिया, और आज तो 20-20 साल की किस्तें चुका कर 1-2 कमरे का घर ना आपका हुआ। ज़रा सा सोचिए, ये सब कुछ भी हो लेकिन आपका बच्चा या आपकी बच्ची आग में चली जाए, आग ही लग जाए उस घर को जो बड़ी मेहनत से लिया, और कोई इंश्योरेंस नहीं थी, सब अपने नाम पे गया, बैंक करप्ट हो गए, तो फिर आज औलादों की फिक्र कीजिए। उस दिन बहुत से चेहरे रोशन होंगे जो हंसते हुए और खशाश बशाश होंगे, और बहुत से चेहरे उस दिन गुबार आलूत होंगे जिन पर स्याही चढ़ी हुई होगी, वो यही बद किरदार लोग होंगे। तो क्या सीखा सूरत अब्बस से? तबलीगे दीन में फकीर और गनी सब बराबर, चाहत के साथ तलब के साथ जो आएगा उसको प्रोटोकॉल मिलेगा, या किसी को कोई भी फेवरेटिज्म का तोहफा नहीं मिलेगा। कुरान नसीहत की चीज़ है, जो चाहे इसको याद कर ले। और इसी तरह से इंसान नहायत नाशुक्रा है, रीढ़ की हड्डी और उसकी तख्लीक का जिक्र पड़ा, और उस दिन की तैयारी कर लो जिस दिन कोई रिश्ता किसी के काम नहीं आएगा, सारी ज़िंदगी इन्हीं रिश्तों में खो के गुजार देते हैं। पूरे पारे का अगर मुझे कोई नाम कहता ना ये फितने के लफ्ज़ के बगैर, तो मैं लिखती हमारे बच्चे, बेचारे बच्चे, प्यारे बच्चे। यकीन कीजिए मैं एक एक बच्चे से मोहब्बत और उस दर्द के साथ पढ़ रही हूँ जिनके माँ बाप ने कभी मजबूरियों के नाम पे, कभी हालात के नाम पे, कभी क्या करें फिर किधर जाएं फिर किधर खप जाएं, क्यों नहीं आपको समझ आती? अपनी सोने चांदियों को आपने पकड़ कर लॉकर्स में रखा हुआ है, बैंक स्टेटमेंट्स अब किसी को न दिखाएं, और आपकी सोने चांदी हीरे मोतियों से प्यारी बच्चियां सड़कों पर रुलती हैं, ये काउंटर्स पर बिठाने वाली बच्चियां, ये कोई शो पीस है? क्या आप इनको लड़कों के साथ बिठाकर पढ़ाएं और फिर उनके साथ जॉब्स कराएं? फिर बेतकल्फी तो हो जाती है, एक ही दिन झिझक होती है, अगले दिन तो सब अपने ही लगने लगते हैं। अल्लाह हमारा ये दर्द महसूस करके मुसलमान नस्लों के लिए कोई ऐसा तालीमी सेटअप आम करने की तौफीक दे जिसको ले, और जो बेचारे कर लेते हैं वो कहते हैं लो जी अब इधर गए तो फिर उधर कैसे जाएंगे। 20 साल एक बच्चा बच्ची आपका दुनिया के पीछे भागता है, रुलता है, बल्कि खुशहालियां पाने के लिए, दौलत पाने के लिए। आप उसको कहें 1 साल दे दें अपनी ज़िंदगी का, देखिए माइंड डिफेंसिव हो जाती हैं बच्चियां बेचारी, तो शायद मान ही जाए। नहीं, ये नहीं हो सकती, बाहर नहीं जा सकती, अकेले नहीं रह सकती। यानी अगर मैं सब ऑनलाइन सुनने वालों को एक दावत दूं, ऐसे बगैर सोचे बोल रही हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने वक्त के साथ और बेहतरियां तो लानी है। ये मैं आपको कह सकती हूँ कि इस इदारे में मैं कह सकती हूँ कि 1 साल में 1 साल का कोर्स होता है, और बहुत सारे इदारे भी कर रहे हैं। मैं ये भी बताऊं, आप फ़ोन कीजिए, नंबर्स लीजिए, अपनी बच्चियों को 1 साल के लिए दीन के लिए डिवोट करें। मैं कुरान पढ़ी हुई माओं से बात करती हूँ, कितनी हैं जो इस पे तैयार हो जाएंगी, बाकियों को तो बाहर करें, जिस माँ ने नहीं पढ़ा वो बच्ची को कहाँ करेगी। हमारी बच्चियाँ दूसरे मुल्कों में जाने को तैयार, अकेले रहने को तैयार, अकेले सफ़र करने को तैयार, क्योंकि नोन है। 4-4 5-5 साल एक बच्ची डॉक्टर बनने के लिए दूसरे मुल्क की यूनिवर्सिटी में जाती है कि नहीं जाती, हॉस्टल में रहती है कि नहीं रहती, अकेले ट्रेवल करके आती है कि नहीं जाती, ये है आज का फितना। इतना इसका सहर है कि बड़े बड़े बाइज्जत लोग, माशाल्लाह बड़े मुत्तकी परहेजगार लोग भी ये काम करने को तैयार है, क्योंकि सब करें। आज फैशन हो जाए ना तो देखिए फिर क्या होगा। बहरहाल इस पे तो इशारे ही काफी हैं, सोचते भी नहीं है हम तो। सूरत तकवीर 81 नंबर की सूरत है, 29 आयात हैं। सूरत तकवीर में वाकई अल्लाह ताला ने एक ऐसी ही बच्ची को पेश किया कि जिसको दुनिया में आने से पहले ही दुनिया से जाने का संदेशा मिलता है। कल तो वो पकड़ कर बच्चियों को मार देते थे ना, आज के बच्चियों की किलिंग किसी और रंग से, उनको मर्द बना के पालने में, एक लड़की और एक लड़के में कोई फर्क नहीं रहता जवान होने के बाद। Bismillahirrahmanirrahim. İza şemsu kuvvirat ve izen nucumun kadarat ve izel cibalu sujirat ve izel işaru uttilat ve izel vuhuşu huşirat ve izel biharu sujirat. जब सूरज लपेट दिया जाएगा और जब सितारे बेनूर हो जाएंगे और जब पहाड़ चलाए जाएंगे और जब 10 माह की हामिला ऊँटनियाँ छोड़ दी जाएंगी और जब वहशी जानवर इकट्ठे किए जाएंगे और जब समंदर भड़काए जाएंगे और जब जानें जिस्मों से मिला दी जाएंगी और जब जिंदा गाड़ी हुई लड़की से सवाल किया जाएगा। वैज़ल मौऊदा तो सुला मुफसरीन कहते हैं कि माँ बाप से अल्लाह इतना नाराज़ है कि उनसे नहीं पूछ रहा, गुस्से की वजह से कि अल्लाह कलाम ही नहीं करना चाहता, बच्ची से पूछा जा रहा है क्या बेअय्यि ज़म्बिन कुतिलत, कि किस गुनाह की वजह से वो कत्ल की गई, इस मासूम जान का कसूर क्या था। कल तो पैदा होती है गड़ा खोदे रखते थे ना उसमें बच्ची को डाल दें। एक साहबी कहते हैं कि मैं अपनी बच्ची से मोहब्बत की वजह से उसको नहीं मार सका और हत्ता कि वो मेरे साथ चलने के काबिल हो गई, चलती फिरती तोतली जुबान थी लेकिन मेरे लोग मुझे ताने देते थे और माशरे के रस्म व रिवाज इतने जालिम होते हैं कि एक दिन कुदाल पकड़ कर उस बच्ची को लिया और चल पड़े और बच्ची भी पीछे अब्बा अब्बा कहती जा रही है, कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे, मट्टी खोदी बच्ची साथ खोद रही है और उस बच्ची को उसी घड़े में धक्का दिया और वो बच्ची अब्बा अब्बा कह रही है। वो साहबी अपनी कहानी सुना रहे हैं और अल्लाह का रसूल ऐसे रो रहा है कि उनकी दाढ़ी भी तर हो रही है। बेहोश हो जाते थे बाद साहबा अपने पिछली ज़िंदगी के जुर्म याद करके, 70-80 लड़कियों को ज़िबा किया हुआ था, जिंदा दरगोर किया हुआ था, दूसरों के लिए भी लोग ये काम करते थे। आज इस औरत के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हुआ। आज खुशहालियों के नाम पे 2 यूनिट जॉब्स, 2 लोग कमाएंगे तो घर चलेगा। कभी आपके दादा और दादी ने भी ये जुमले बोले थे, नाना नानी उनके बड़े, भाई देखो बेगम तुम नहीं कमाओगी तो घर नहीं चलेगा। ऑफ कोर्स मर्द कहें कि जब बेगम की लिस्ट बड़ी लंबी होगी। आज आपने क्यों इस सोच को अपने दिल में जगह दी कि हमारे बच्चे कामयाब ही नहीं है जब तक जॉब नहीं करेंगे। पूछिए जरा उन मासूम बहनों से जो हालात के थपेड़ों में डाल दी जाती हैं और जॉब करनी पड़ती है, उनकी तो मजबूरी बन गई ना, नहीं करेंगे तो हुकूमत कब तक उनको देगी। अल्लाह ना करे कोई मजबूर हो और जॉब करे, क्यों आपकी मेरी बेटी जॉब करे, क्यों बाप जिंदा नहीं है, कल उसको अच्छा शौहर नहीं मिलने वाला। अल्लाह ने औरत को इतना सिक्योर कर दिया और आज दूसरों से सुन सुनकर सुन हो गए और इतने मुतमईन है क्योंकि पहले पढ़ाते हैं, इतने कर्ज लेके फिर उसी कर्जे को दूर करने के लिए जॉब तो करनी होगी। बस एक विशेष सर्कल में बच्ची क्या फंसी कि रैट रेस का शिकार हो गई। और यही चीज़ें बच्चों की भी है। देखिए मैं बच्चियों की बात ज़्यादा इसलिए करती हूँ कि मैं औरत हूँ और मेरा भी सिस्टर से ही ताल्लुक है और मेरे इर्द गिर्द भी बच्चियाँ ही होती हैं। लड़कों से भी पूछिए कि लड़के की भी ज़िंदगी का यही मकसद है कि आप नमाज़ें छोड़ छोड़ के पढ़ें और फिर नमाज़ें छोड़ छोड़ के कमाएं। ठीक है मर्द कवाम है, उसको हुनर देना है, उसको जॉब करनी है, उसको बिजनेस करना है। पहली तो बात है जॉब मर्दों के लिए भी पसंदीदा नहीं है, वल्लाह ही अंदर की बात बता दूँ आपको, ये तो ग़ुलामी की एक नई शक्ल है। आप अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते, आपको उनके दिए हुए कपड़े पहनने पड़ते हैं, बाद जगह आपको शेक हैंड करने पड़ते हैं। काम करना है तो बिजनेस कीजिए, उलमाए कराम से जाकर सीख लीजिए, पूछ लीजिए, सब अम्बिया करम तिजारत करते थे, आज भी बिजनेस करने वाला फिर भी आज़ाद है। वो अगर अल्लाह का खौफ रखकर एक दफ़ा सूद कमठ मार देना तो इंशाल्लाह बड़ी बरकत है उसके रिस्क में। जॉब्स के अंदर इंसान मजबूर होता है और फिर उसका जो आगे हालात है वो आप खुद ही देख सकते हैं किस तरीके से आज हम इस सारे सर्कल को लेकर चल रहे हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इसमें हमारे लिए और क्या रखा है। और जब नामे अमाल खोल दिए जाएंगे और जब आसमान की खाल उतार ली जाएगी और जब जहन्नम भड़काई जाएगी और जब जन्नत नज़दीक कर दी जाएगी, अलिमत नफ्सुम्मा अहदरत, तो उस दिन हर शख्स जान लेगा जो कुछ वो लेकर आया होगा। फलाक्सिमु बिलखुन्नस, तो मैं कसम खाता हूँ पीछे हटने वाले की, फिर चलने फिरने वाले छुपने वाले सितारे की, और रात की जब वो जाने लगे और सुबह की जब वो चमकने लगे। यकीनन ये एक बुजुर्ग रसूल का कहा हुआ है जो कुव्वत वाला है, अर्श वाले रब के नज़दीक बहुत बुलंद मर्तबा है, जिसकी आसमानों में इताअत की जाती है, अमीन है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ इशारे हैं। और तुम्हारा साथी दीवाना नहीं यानी अल्लाह के नबी, इसने इस फरिश्ते को आसमान के खुले किनारे पर भी देखा है और ये गैब की बातों को बतलाने के लिए वकील भी नहीं, और ये कुरान शैताने मरदूत का कलाम नहीं। फिर तुम कहाँ जा रहे हो? ये तो तमाम जहान वालों के लिए नसीहत नामा है, बिलखसूस उसके लिए जो तुम में से सीधी राह पर चलना चाहे, और तुम बगैर परवरदिगार के चाहे कुछ नहीं चाह सकते। आखिरी आयत पर गौर करें। وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. क्या देखा आपने मैंने कि हम इसमें से अपनी मर्जी से कुछ नहीं ले सकते. बहुत सारे लोग हैं जो पूरी कोशिश भी करते हैं खुशहाल होने की, फिर भी जब तक अल्लाह ताला ना दे तब तक बात नहीं बनती. तो हमने यही सीखा कि इस दुनिया के लिए बस इतनी मेहनत करनी, फिक्र करनी कि जितना हम कर सकते हैं, बाकी नतायज अल्लाह पर डाल दें. सूरत इन्फितार 82 नंबर की सूरत है, 19 आयात है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इज़ समाउन फतरत वैज़ल कवाकिबुन तसरत वैज़ल बिहारु फज्जिरत वैज़ल कुबूरु बौसिरत अलिमत नफ्सुम्मा कद्दमत व अख्खरत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम. जब आसमान फट जाएगा और सितारे झड़ जाएंगे और जब समंदर बह निकलेंगे और जब कब्रें शक करके उखाड़ दी जाएंगी. सोचिए क्या मंजर है. यहाँ बैठे बैठे अगर ये चारों काम होने लगे, जमीन जलजले से हिल जाए, पानी समंदरों का हमारे ऊपर आने लगे, आसमान के तार हिलें और सन्नाटेदार आवाजें आए और कब्रें खुल खुल कर अंदर से मुर्दों को बाहर करने लगे, कितने इत्मीनान से बैठेंगे हम. ये फिक्र लग जाए तो दुनिया की खुशहालियों से ज्यादा वहां की फिक्रें लग जाएं, जिसके बारे में फरमाया ये सब होने के बाद क्या होगा इसको देख लो. आलिमत नफ्सुम्मा कद्दमत व अख्खरत. उस वक्त हर शख्स अपने आगे भेजे हुए और पीछे छोड़े हुए यानी अगले पिछले आमाल को मालूम कर लेगा. या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम. ए इंसान, तुझे अपने रब्बे करीम से किस चीज ने बहकाया. अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक. जिस रब ने तुझे पैदा किया फिर ठीक ठाक किया और फिर दुरुस्त और बराबर किया. यानी तू क्यों उनसे इतना नाराज है, तुझे अल्लाह का नाम अच्छा क्यों नहीं लगता, तुझे अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद क्यों नहीं. उस शैतान की बातें मानता है जो मगफरत के नाम पे तुझसे गुनाह कराता है, और उस रब की बात पे नेकियां नहीं करता जो जन्नत के वादे देता है. तो अल्लाह ताला आपके मेरी शक्ल की बात करते हैं, जिस सूरत में तुझे चाहा जोड़ दिया, तो अपनी शक्लों को बुरा ना कहें. आपकी मेरी शक्ल सूरत अल्लाह का फैसला है. और याद रखिए, अल्लाह ने ये चेहरा जहन्नम से बचाने के लिए दिया है, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं. और आपको अल्लाह ने अगर हुसन दिया तो इसको छुपाइए, चेहरों को निकाब में छुपाइए, आधे से ज्यादा फितने इधर ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अब आप इकामते दीन के दर्जे तक पहुंच चुके हैं. अगर आप इस चीज को सच समझते हैं और अभी तक नहीं माना, तो रिवाइवल ऑफ फेथ, तस्किया, तरबिया. और अगर आप इस पे जम गए कि ठीक है, कि ये जो भी है यही ठीक है, तो फिर आपकी खुशी. लेकिन याद रखिए कि इंसान जिसको हक समझे और उसको ना माने, उसकी एक टके की इज्जत नहीं रह जाती अल्लाह की निगाहों में, क्योंकि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह. और अल्लाह ने अगर आपको अच्छी शक्लो सूरत दी है, तो आइए लोगों को नेकियां करके दिखाइए, क्योंकि जब हसीन लोग गुनाह करते हैं ना, तो लोगों को गुनाह हसीन लगने लगते हैं. और जब हसीन और अच्छे और पढ़े लिखे और खूबसूरत और डिसेंट लोग दीन का काम करते हैं, तो लोगों को दीन भी डिसेंट लगने लगता है. अपने हुस्न को अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल करें, जैसे लोग मॉडल्स को प्रोडक्ट बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं. आप अपने इस हुसन को और अल्लाह ने जो सलीका दिया उसको इसलिए जमा कीजिए कि लोगों को पता चले कि दीनदार ऐसे नहीं होते कि जैसे कि उनके जहनों में है. हरगिज़ नहीं, बल्कि तुम तो जजा सजा के दिन को झुठलाते हो. यकीनन तुम पर निगहबान इज्जत वाले लिखने वाले मुकर्रर हैं, जो कुछ तुम करते हो वो जानते हैं. यालमूना मा तफ्फलून, क्या जानते हैं वो. इन्नल अब्रार लफी नईम. यकीनन नेक लोग जन्नत के ऐशो आराम और नेमतों में होंगे, और यकीनन बदकार लोग दोजख में होंगे. बतले वाले दिन इसमें जाएंगे, वो इससे कभी गायब ना होने पाएंगे. तुझे क्या खबर के बदले का दिन क्या है, फिर मैं कहता हूँ कि तुझे क्या मालूम के जजा और सजा का दिन क्या है. वो है जिस दिन कोई शख्स किसी शख्स के लिए किसी चीज का मुख्तार ना होगा, और तमाम तरह काम उस रोज अल्लाह ही के होंगे. आज भी उसी के हैं, लेकिन उस दिन तो वाला अम्रु यौम इज़िल्लिल्लाह. तो क्या सीखा हमने इन चंद सूरतों से, तकवीर और इन्फितार से, क्यामत के हौलनाक मंजर देखे. तुम परवरदिगारे आलम के चाहे बगैर कुछ नहीं जा सकते, और कब्रें फट जाएंगी और अबरार का किरदार. अल्लाह ताला हमें अभी इसकी फिक्र लगा दे. आज सोचिए कि कोई मेरे काम नहीं आएगा, तो फिर मैं आज अल्लाह को क्यों ना पुकारूं जो उस वक्त भी और आज भी मेरे काम करता है. तीन मुकाम ऐसे आने वाले जिंदगी में, ला यज़कुरु अहदुन अहदा, जहाँ कोई किसी के काम नहीं आएगा. पुल सरात पे अपने अमाल खुद पकड़ने पड़ेंगे, नामे अमाल के वक्त कोई काम नहीं आएगा, और जिस वक्त हमारे पलड़े तुल रहे होंगे उस वक्त कोई काम नहीं आएगा. तो आज अपने आप को और अपने बच्चों और अपने घर वालों को साथ लेकर उसकी फिक्र लगानी है ताकि अल्लाह ताला हम पे अपनी रहमत फरमाए। आगे सूरत मुतफ़िफ़ीन 83 नंबर की सूरत। मुतफ़िफ़ के लफ्ज़ में कमी बेशी है, तत्फ़ीफ़ झूठ बोलने के लिए भी आता है, हुकूक व फ़राइज़ में कमी बेशी के लिए भी आता है, और डंडी मारना इसका एक मारूफ लफ्ज़ है। ये रेड़ी वाले और ठेलों वालों की बातें नहीं है। हज़रत उमर ने एक शख्स को तेज़ी से नमाज पढ़ते देखा तो आपने फरमाया, लक़द तफ़फ़्ता, तूने नमाज में कमी की। तो ये चीज़ें पढ़ते कर सुनिएगा कि आप और मैं अल्लाह के हक में कहीं डंडी तो नहीं मारते। वैलुल्लिल मुतफ़िफ़ीन, बड़ी खराबी है नाप तोल में कमी करने वालों की कि जब लोगों से नाप कर लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं, और जब इन्हें नाप कर या तोल कर देते हैं तो कम देते हैं। क्या इन्हें मरने के बाद उठने का ख्याल नहीं? इस अजीम दिन के लिए जिस दिन सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे, यकीनन बदकारों का अमलनामा सिज्जीन में है। तुझे क्या मालूम सिज्जीन क्या है? किताबुम मरकूम। तो देखिए, मुतफ़िफ़ीन छोटी छोटी डंडियों की बात है, मसलन नाप तोल में कमी, दफ्तरी औकात में जाती काम करना, सरकारी चीज़ों का जाती इस्तेमाल, बच्चों की उम्र कम बताकर टिकट के पैसे बचाने, और इसी तरह की बहुत सारी कमी बेशियां जो हम रिश्ते नातों में भी करते हैं। अल्लाह कहते हैं, क्या इन लोगों को ये गुमान नहीं कि इनको उठना भी है? रिवायत है सिलसिला सहीहा की 3731, अबू हुरैरा रावी हैं। आपने फरमाया, अनकरीब मेरी उम्मत को भी साबिका उम्मतों की बीमारी लग जाएगी। साहबा ने कहा, उम्मतों की बीमारी से क्या मुराद है? आपने फरमाया, इतराना, तकबुर करना, माल दौलत की बख्तात, दुनिया में मुबालगा और फरेब से काम लेना, बुगस करना, हसद करना और बगावत और जुल्म करना। ये एक लंबी लिस्ट है आपके मेरे चेक पॉइंट की। कई नामे अमाल में ये सारी चीज़ें लिखी गई तो क्या बनेगा, सोचने की बात है। इसीलिए फरमाया, किताबुम मरकूम वही यौमिन, ये तो लिखी हुई किताब है। इस दिन झुटलाने वालों की बड़ी खराबी है जो जजा और सजा के दिन को झुटलाते थे। इसे सिर्फ वही झुटलाता है जो हद से आगे निकल जाने वाला और गुनाहगार होता है। जब इसके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो कह देता है कि ये अगलों के अफसाने हैं, यूं नहीं बल्कि इनके दिलों पर इनके अमाल की वजह से जंग चढ़ गया है। हरगिज़ नहीं, ये लोग उस दिन अपने रब से ओट में रखे जाएंगे, फिर ये लोग बिल यकीन जहन्नुम में झोंके जाएंगे। कल्ला बलराना आला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। हाईलाइट कीजिएगा, किसने रंग चढ़ाए दिलों पर? ये देखिए कि दिल पे जंग लग गया। जब दिलों पे जंग लगता है ना तो ऐसे ही होता है। किसी साथी ने बहुत ही अच्छा जुमला लिखा, जब उनको लोगों ने देखा कि पहले से बेहतरी आ गई तो कहा, क्या वक़्त, दिल पे जंग लग गया था वो उतर गया। तो याद रखिए, हमारे दिलों पर जंग लग जाता है। ये दिलों के जंग क्यों लगते हैं? कमाइयों की वजह से। बस आज देखिए कि दिल परेशान है, स्ट्रेस की बहुत सारी ज़ाहरी वजूहत भी हैं, इस पर सेमिनार्स तक हो चुके हैं, लेकिन दुनियावी इसकी जो वजूहत है वो तो हैं ही, इसकी रूहानी वजूहत में एक वजह क्या है? दिल पे जंग लग जाता है। निफाक किसकी वजह बनता है? मोहर लगती है तो ख़त्म का लफ्ज़ है। देखिए सूरह बकरा में मरदुन का लफ्ज़ था, फिर ख़त्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम था। कई जगह हमने पढ़ा, दिल मुर्दा है, अफ़ामन काना मैतन, दिल का मुर्दा होना भी यही है। फिर इस तरह बेगैरत हो जाता है बंदा, हमीयतुल जाहिलिया, यानी गलत काम देखकर अगर आपका दिल ना हिले, कसावत कल्बी का नाम है, दिल का पथरा जाना। इसी तरह इंसराफ का लफ्ज़ कुरान में आया, दिल का फिर जाना, यानी मोहब्बत की जगह नफरत आती है। इसी तरह ज़ीक दय्यक़ का लफ्ज़ है, दिल का तंग होना, और रान जरा इन दिलों को जंग लगाना, ये है स्ट्रेस वाले बंदे के दिल की कैफियत। इलाज क्या है? अल्लाह की शुक्रगुजारी कीजिए, तौबा की कसरत कीजिए, और अहले ईमान को हकारत से देखना छोड़ दीजिए, वरना दिल की यही हालत होगी। फिर कह दिया जाएगा, यही है वो जिसे तुम झुटलाते रहे। यकीनन नेकुकारों का नाम है, अमाल इल्लीयीन में है। तुझे क्या पता कि इल्लीयीन क्या है? वो तो लिखी हुई किताब है, मुकर्रब फरिश्ते इसका मुशाहिदा करते रहते हैं। क्लोज सर्कट लोगों को ही रसाई हो सकती है इन फाइल्स तक, ये मुराद है। यकीनन नेक लोग बड़ी नेमतों में होंगे, मुसहरियों पर बैठे देख रहे होंगे, तू इनके चेहरों पर से ही नेमतों की तरोताजगी पहचान लेगा। ये लोग सर बमोहर खालिस शराब पिलाए जाएंगे, जिस पर मुश्क की खुशबू होगी। सबकत ले जाने वालों को इसी में सबकत ले जानी चाहिए। इस आयत को हाईलाइट कीजिए, आपके थीम के साथ मिलती है, वफी जालिक फल यतना फसिल मुतनाफिसून। मेहनत करनी है, कंपटीशन करना है, कंपैरिजन करना है, तो इसमें करो। हम दुनिया के घरों, कोठियों, बंगलों, सेलफोन्स में क्यों दूसरों से कम्पीट करते हैं? कोशिश कीजिए तो इस जन्नत को पाने की कीजिए, और इसकी आमेजिश तस्नीम की होगी। वो चश्मा जिसका पानी मुकर्रब लोग पियेंगे, गुनहगार लोग ईमानदारों की हंसी उड़ाया करते थे, इनके पास से गुजरते हुए आपस में आंख के इशारे करते थे, और जब अपने वालों की तरफ लौटते तो दिल लगियां करते थे, और जब इन्हें देखते तो कहते, यकीनन ये गुमराह बेराह लोग हैं, ये इन पर पासवान बनाकर तो नहीं भेजे गए, यानी क्यों कमेंट्स पास कर रहे हैं ये अल्लाह के नेक बंदों पे। आज मंजर बदल जाएगा। फल यौम अल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ्फार यदहकून, पस आज ईमान वाले इन कुफ्फार पर हंसेंगे, तख्तों पर बैठे देख रहे होंगे क्या अब इन मुनकिरों ने जैसा ये करते थे पूरा पूरा बदला पा लिया। तो क़यामत के दिन अल्लाह बिलाल को जन्नतों में बुलाएंगे और तख्तों पे बिठाएंगे, और नीचे जलते उमैया को देखेंगे और पूछा जाएगा, खल सुबल कुफ्फार उमा कानू यफ़लून। तो देखिए, इस दुनिया के फितने में खोकर खुशहाल होते हुए बाज़ दफ़ा लोग अपने इस्लाम का रंग रूप ढाल देते हैं, छोड़ देते हैं कि लोग हम पे हंसेंगे, फिर मेरी दोस्तें मेरा मजाक उड़ाएंगी। तो ये आयतें पढ़ लीजिए, वहाँ की हंसी अच्छी कि यहाँ की अच्छी। सूरत इंशिकाक 84 नंबर की सूरत है, 24 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ अस्समाउन शक्कत वाज़िनत लिरब्बिहा वखुक्कत, जब आसमान फट जाएगा और अपने रब के हुक्म पर कान लगाएगा और इसी के लायक वो है, और जब ज़मीन खींच कर फैला दी जाएगी और इसमें जो है वो इसे उगल देगी और खाली हो जाएगी, और अपने रब के हुक्म पर कान लगाएगी और इसी के लायक है। सोचिए, इतना बड़ा आसमान और इतनी बड़ी ज़मीन, अगर अल्लाह के हुक्म पे कान लगाए हुए तो इस 5-6 फुट के इंसान को क्या अल्लाह के हुक्म पे कान नहीं लगाना। या अय्युहल इंसान, ए इंसान, तो अपने रब से मिलने तक ये कोशिश और तमाम काम और मेहनतें करके इससे मुलाकात करने वाला है। सोचिए, जिस दिन मुलाकात होगी, यह है असल कामयाबी का मेयार, उस दिन कामयाब होना इंशाल्लाह। तो इस वक्त जिस शख्स के दाएं हाथ में अमालनामा दिया जाएगा, इसका हिसाब तो बड़ी आसानी से लिया जाएगा। दुआ करिए, अल्लाह महासिब ना हिसाब यसीरा, वो अपने अहल की तरफ हंसी खुशी लौट आएगा। हाँ, जिस शख्स का अमलनामा इसकी पीठ के पीछे से दिया जाएगा तो वो मौत को बुलाने लगेगा और भड़कती हुई आग में दाखिल होगा। ये है असल चीज़ जो नाकामी की है। ये शख्स अपने मुतल्लकीन में यानी दुनिया में बड़ा खुश था, इसका ख्याल था कि अल्लाह की तरफ लौट कर जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं, हालांकि इसका रब इसे बखूबी देख रहा था। मुझे शफक की कसम और रात की और इसकी जमा करदा चीज़ों की कसम और जान की, जब वो कामिल हो जाता है, लतरकबुन्न तबकन अन तबक, एक हालत से दूसरी हालत में पहुंचोगे। इन्हें क्या हो गया कि वो ईमान नहीं लाते, और जब इनके पास कुरान पढ़ा जाता है तो सजदा नहीं करते, बल्कि जिन्होंने कुफर किया वो छुटला रहे हैं। अल्लाह ताला खूब जानता है जो कुछ दिलों में रखते हैं। इन्हें अलमनाक अजाबों की खुशखबरी सुना दो। इसके बरक्स देखिए, ये है कामयाबी का हकीकी मेयार, इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाति लहुम अजरुन गैरु ममनून। हाँ, ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को बेशुमार और ना खत्म होने वाला अजर है। लिमिटेड लाइफ में अनलिमिटेड नेकियां करने वाले अजर पा जाएंगे। तो जो आज कर सकते हैं वो कर लीजिए, कल किसने देखी है। सिलसिला सहीहा की रिवायत है, 3659 सहल बिन साद से रिवायत है, छोटे छोटे मामूली और हकीर समझने वाले गुनाहों से बचो। सोचिएगा, आज हम तो छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े गुनाहों को भी हकीर समझने लगे, सिर्फ इस खुशहाली के फितने का शिकार होकर। क्योंकि छोटे छोटे गुनाहों की मिसाल उस कौम की तरह है जो एक वादी में ठहरी। एक शख्स एक लकड़ी लाया, दूसरा भी एक लकड़ी लाया, हत्ता कि उन्होंने अपनी रोटियां पका ली। छोटे गुनाह करने वाले को जब पकड़ा जाता है तो वो गुनाह उसे हलाक कर देते हैं। तो इस पे बाद में गौर कीजिएगा, क्या पर मैं कहाँ खड़े हैं, क्या सीखा सूरत मुतफ़िफ़ीन और इंशिकाक से, नाप तोल में कमी के बुरे नतायज, इंतहाई अलमनाक और दुख दर्द की जगह में दाखिला होने का खतरा, नेमतों और राहतों और इज्जत और जाह की जगह को पाने की तलब रखनी है। गुनाहगार रोज़े क़यामत रुसवा होंगे और ज़मीन मुर्दे उगल देगी, अल्लाह उसकी फिक्र लगा दे। सूरत बुरूज 85 नंबर की सूरत, 22 आयात है। वस्समाई ज़ातिल बुरूज वल्यौमिल मऊद व शाहिदिम व मशहूद कुतिलल असहाबुल उख्दूद। पिछली कौमों में से कौम का जिक्र करके यहाँ इस्तकामत फिर दीन सिखाई जा रही है। बुर्जों वाले आसमान की कसम, वादा किए हुए दिन की कसम, हाजिर होने वाले और हाजिर किए गए की कसम, के खंदकों वाले हलाक किए गए, वो एक आग थी ईंधन वाली, जबकि वो लोग इसके आसपास बैठे थे और मुसलमानों के साथ जो कुछ कर रहे थे इसको आमने सामने देख रहे थे। ये लोग इन मुसलमानों के किसी और गुनाह का बदला नहीं ले रहे थे, यानी मुसलमानों का और कोई जुर्म नहीं था सिवाय इसके कि वो अल्लाह गालिब लाए कि हम की जात पर ईमान लाए थे। नोट कीजिए, सिर्फ यही जुर्म आपका बहुत है कि आप मुसलमान हैं, बाकी चीजें तो कोई देखता भी नहीं आपकी। जिसके लिए आसमानों जमीन का मुल्क और अल्लाह ताला के सामने है हर चीज, बेशक जिन लोगों ने मुसलमान मर्दों और औरतों को सताया फिर तौबा भी न की, तो इनके लिए जहन्नम का अजाब है और जलने का अजाब है। बेशक ईमान कबूल करने वालों और नेक काम करने वालों के लिए वो बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, और यही है वो बड़ी कामयाबी जिसके लिए कोई कोशिश करे, जिसकी कोई फिक्र करे, यही है बहुत बड़ी कामयाबी। इन्ना बादशाह रब्बी का लशदीद, यकीनन तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। वही पहली मरतबा पैदा करता है, वही दोबारा पैदा करेगा। वो बड़ा बख्शिश करने वाला और बड़ा मोहब्बत करने वाला है। अर्श का मालिक अजमत वाला है, जो चाहे इसे कर गुजरने वाला। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनी वफात के वक्त यही आयतें पढ़ रहे थे, फाल उल्ली माजूरी, मुराद यह कि अब मेरी मौत का वक्त आ गया, अल्लाह ने जो करना है वो करेगा। तुझे लश्करों की खबर मिली है, यानी फिरौन और समूद की? कुछ नहीं, बल्कि कुफार छुटलाने में पड़े हुए हैं और अल्लाह ताला भी ने हर तरफ से घेरे हुए हैं। बल्कि ये कुरान है बड़ी शान वाला, लोहे महफूज में लिखा हुआ। आज ये कुरान आपके मेरे हाथ में, और अल्लाह ने इसमें अपनी रहमतों की बात की है। तो बुखारी की रिवायत 3194, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब अल्लाह ताला मखलूक को पैदा कर चुका तो अपनी किताब यानी लोहे महफूज में, जो इसके पास अर्श पर मौजूद है, इसमें लिखा, कतबला रहमा, यानी रहमत कैसे लिखी? मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब आएगी। अल्लाह की रहमत ही है जो आज आप और मैं दुनिया में जी रहे हैं और खा रहे हैं पी रहे हैं। तो हमने क्या सीखा इस सारे हिस्से में? अपने ऊपर नजर रखेंगे, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि हमें खुशहाली के इस फितने में कामयाब कर दे। हमने जितनी बातें पढ़ी अपनी और अपनी औलादों के बारे में, इसको हमारे अमल में ले आए। हमें अपनी औलादों की सच्ची खैर ख्वाही करनी है, मोहब्बत करनी है। देखिए, हालात हम नहीं बदल सकते ना, तो कम अज कम इस माहौल में हमारे बच्चे इस तरह के गेटअप और माहौल और इस हाल हुलिये में जाएं और इतने कॉन्फिडेंस से जाएं कि जिसके बाद वो इस्लाम का नाम रोशन करें। बहुत सारी बातें हम यूथ के बारे में कल भी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।